نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. DQ 2021 یہ لفظ کہتے ہوئے بھی اب تو آپ کے کان سنتے سنتے اور میرے لفظ بولتے بولتے ٹیون ان ہو چکے ہوں گے, لیکن کبھی بھی اس خوشی کو کم نہ کیا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دی ہے اس کتاب کو پڑھنے کی, کہ ہم اس سال میں زندہ ہیں اور ہم یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سال کا یہ پورا دور قرآن بھی سننے کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو جذب بھی کر سکیں. آج پارا نمبر 24 ہمارے سامنے ہے, اور فمن ازلم, بس کون ہے زیادہ بڑا ظالم, ممن کذب, اس شخص سے, اللہ ہی, اللہ پر, جو جھوٹ گھڑتا ہے اللہ پر, یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس بارے میں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ کچھ اور چیزوں کو لے کر آتے تھے ان کی باتیں بھی ہیں, اور جو ڈٹنے والے تھے, جو جمنے والے تھے, وہ کیسے جم جاتے تھے. تو آج ہم انشاءاللہ اس بارے کے اندر سے ہدایت کی طلب کے ساتھ جس بات کو اپنے سامنے رکھیں گے اور جس چیز کو آج طالب ہدایت کو اپنے دل میں رکھنا ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ اب جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں میری زندگی میں آ گئیں, مجھے جو تو نے فیلنگز دے دیں اور میں جب جم گئی اور کوئی نیکی کا کام شروع کر دیا, تو اب مرتے دم تک مجھے اس پہ استقامت دینا, کیونکہ استقامت میں قیامت ہے. آج ہماری مین تھیم آیت جو ہے وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. سورۃ حمیم سجدہ, جس کو سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے, اس کی آیت نمبر 30 ہے. یہ پورے فوکس ہو کے سنیے, ذرا سا سوچیے کہ ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں اس وقت. اگر آپ صرف باتیں کرتے, کھاتے پیتے, اٹھتے دوڑتے بھاگتے, جو ہی میری آواز آپ کے کانوں تک آ جائے تو آ کے آپ قرآن سننے بیٹھیں گے, کبھی جذب نہیں ہوگا آپ کے اندر. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے وضو کی طرح پہلے سے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں, بغیر کسی مجبوری کے وجہ کے اگر آپ لیئر موڈ سے اٹھ کر قرآن سننے آتے ہیں تو قرآن جذب نہیں ہوتا. اس کے لیے تو پہلے سے مسلح پہ بیٹھے ہوں, پھر سمجھ آتا ہے کہ یا کنا بدو و یا کنستین کیا ہوتی ہے, یہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو آپ سب جو گھروں سے بھی سنتے ہیں, اپنے آپ کو کم از کم 10-12 منٹ پہلے سکرین کے پاس بیٹھ کر دعائیں پڑھ کر, آؤز باللہ پڑھ کر, شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار کر کے بیٹھا کریں, ورنہ شیطان کبھی بھی آپ کو مجھے بہترین طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانے دے گا. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ایک انسان اپنی زندگی میں جب لاتا ہے نا, تو پھر بڑا جگلنگ کرنی پڑتی ہے, بہت جگلنگ کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی آسان سفر تھوڑی ہے. کیا کر رہے ہیں میں اور آپ اس وقت؟ آپ کا میرا زندگی کے اندر یہ گول ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے فوکس کر دے, مجھے ویسا بنا دے کہ جس کے بعد واقعی میں اپنی زندگی میں تجھے محسوس کر سکوں, میں تیری ضرورت کو محسوس کروں. اتنی ڈسٹریکشنز ہیں آج ہماری زندگیوں میں, اتنے کام ہیں ہمیں, ہم اتنے پریشان ہیں کہ وہ کام جس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت تھی, اس کے لیے جب سر پڑتی ہے تو پھر اٹھتے ہیں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ ہمارے باقی کام ہو. تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ استقامت فی الدین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایک مانا اور پھر اس پہ دم گئے, جم گئے, اس پہ ڈٹ گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا خوشخبریاں دیتا ہے, क्या इनामात देता है, ये कितनी बड़ी खुशबख्ती है मेरी और आपकी कि अल्लाह ताला ने आपको और मुझे एक मुसलमान घर में पैदा किया। हम में से किसी ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की तरह कुर्बानियां नहीं दी। इस्लाम हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। कभी उन लोगों से पूछिए एक कदम आगे और एक कदम पीछे, जैसे एक कदम जमीन पे और एक आसमान में वाली कैफियत हो। जब लोग अल्लाह को रब कहते हैं और फिर बात बनती है, फिर भी बात बनती हुई नहीं दिखती। जितना ज्यादा एक इंसान अल्लाह ताला की बात को सुनकर उसके ऊपर अपने दिल को जमाता है, उतना ही अल्लाह ताला उसके दिल को खोल देता है। तो ये आयत आपको मुझे इस्तकामू से इस्तकामत, यानी इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू की दावत देती है। सवाल पैदा होता है कि इस्तकामत क्या होती है, तो आप देखिए काम यकूमु कयाम कयामत, ये लफ्ज़ कुरान पाक में बहुत मुख्तलिफ तरह से आपको दिखेगा। तो इस्तकामत क्या है? ही सलूक सिरातिल मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम पे चलना है। वह दीन अल कय्यम, ये सीधा दीन है। यानी इस्तकामत का मफहूम क्या है कि उस वाज़े रास्ते पर मजबूती के साथ सीधा सीधा दाएं बाएं मुड़े बगैर या किसी भी तरफ माइल हुए बगैर चला जाए। सोचिए जरा इस वक्त क्या सुन रही हूँ, और मैं भी खुद से कहूँ कि मैं क्या सुना रही हूँ। मेरी जिंदगी में ये लफ्ज किस तरह से कहाँ कितना है, मैंने इस लफ्ज को कितना समझा, कितना एंजॉय किया। क्योंकि जब तक आप और मैं ये सब कुछ नहीं समझेंगे, बात नहीं बनेगी। तो इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ये अल्लाह को रब कहना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक रास्ते पे चलना है। और वो रास्ता अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कायमशुदा दीन है। और इस दीन में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म किए गए हर काम को जाहरी और बातनी तौर पर करना, और इसी तरह हर काम से बाज रहना। कौन सा? हर उस काम से बाज रहना शामिल है जिससे मना किया गया। तो क्या पता चला? हस्बे इस्तेतात हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना, और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक किसी काम से बाज रहना, इन दो कामों का नाम इस्तकामत है। अल्लाह ने जो कहा वो करने पे जम जाना, और अल्लाह ने जिससे रोका उससे रुकने पे रुक जाना। ये है आज का आपका मेरा मौजू कि हम इसको कैसे देखें। और लफ्ज इस्तकामत को अगर हम देखें तो अरबी जुबान में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। साबित कदबी उर्दू में आप बोलते हैं सुबात सबता से, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू के तौर में आप पीछे पढ़ चुके हैं। फिर इस्तकामत की आयत आपके मेरे सामने है, पीछे भी पिछले पारे में भी पढ़ी, लेकिन यहाँ बड़ी प्रोफाउंड किस्म की आयत है आपके सामने। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर इसी तरह सबरा, सबर जिसको आप कहते हैं ना, जब ये इस तबरा में बदल जाता है ना, तो इसका मानी फिर इस्तकामत बन जाता है। और अल्लाह ताला ने इस पे भी हमें गाइड कर दिया, वा मुरहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, और सबर के बाद मुसाबरत और सबर इस्तेवार, ये स्टेप्स होते हैं। आपकी मेरी जिंदगी में अल्लाह सुबहाना तला मुख्तलिफ तरीके से ये मामलात लाते हैं। फिर तरह रोबता रवाबित, या अय्युहल्लज़ीना मनुस्बिरु वसाबिरु वरौबितु, ए ईमान वालो सबर से काम लो और बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ और वरौबितु राबता रखो। तो इस्तकामत के लिए मुख्तलिफ लफ्ज जो आपको मुझे दिखे, इससे क्या पता चला कि ये कोई बड़ी अहम बात है। इसी तरह जब बाब, असल तो काफ वाव मीम है ना, लेकिन अलिफ सीन ता कहाँ से आता है? ये बाब इस्तेफ़ाल का है, और जो लोग थोड़े बहुत भी ग्रामर जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह ये बात पता है कि बाब इस्तेफ़ाल जब आता है ना, तो उसमें टू सीक पाई जाती है, किसी भी काम की तलब पाई जाती है। तो इस्तकामा बाब इस्तेफ़ाल के मानी रास्ता और खते मुस्तकीम की तरह सीधा होने के होते हैं। और तशबीह के तौर पर आप इसको किस चीज के साथ ले आते हैं? راہ حق کو بھی اس صراط مستقیم کہتے ہیں. اب یہ ساری باتیں ہم کرتے جا رہے ہیں اور ہم سنتے ہی جا رہے ہیں, لیکن ہم اگر اس کو پوری طرح سمجھ نہ پائے تو اس کا حق تو ادا نہیں ہوگا. تو ذرا سا سمجھ لیجئے اس موضوع کو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, یہ کیا بات ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہے. واپس آیت کو سامنے اپنے کھول دیجئے جو آپ کی مین آیت ہے, تاکہ آپ کا دل دماغ اللہ کے اس کلام سے وہ مثال سمجھ سکے کہ جس نے انشاءاللہ پھر آپ کی میری زندگی کو کھول دینا ہے. اس سے پیچھے کی آئے جو بھی انشاءاللہ ہم ترجمے کے دوران پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں لوگوں کی وہ ڈسٹریکشنز تھیں کہ جس کو قرآن نے والغو فیہ کا نام دیا, یعنی یہ لوگ جو قرآن کی آواز آتی ہے اور یہ آیتیں ساری مکہ کے اس ماحول میں نازل ہو رہی تھی کہ جہاں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تو کرنا چاہتے تھے, کر بھی رہے تھے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کریں کیا. دن رات اللہ کے نبی پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی جا رہی تھی, اور آج کا مسلمان تو نہ جانے کتنا کوئی اس پہ فوکسڈ ہے, لیکن مکہ والے بھی اس بات کے قائل تھے کہ قرآن اپنے اندر کشش رکھتا ہے, دل پذیری ہے, انسان قرآن سنتے وقت ڈیٹیچ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ساتھ میسج چیک کرتا رہے, ساتھ کوئی ادھر ادھر کے کام کرتا رہے تو پھر تو یہ تک نہیں پتا چلتا کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے. آپ اپنے گھر کے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہو اور آپ ادھر ادھر چنگم سے باتیں اور اپنے کندھے اچکاتے سنیں تو اس کو بھی برا لگے گا. تو یاد رکھیے یہ قرآن ایسے سننے والی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کے میرے لیے اپنے گھروں کی سہولت میں اس قرآن کو رکھ دیا تو صرف وہی لوگ اس وقت سن رہے ہیں جو دل کے کان کھول کے سنتے ہیں, جو واقعی اپنے دل کے اوپر اس قرآن کے نزول کو محسوس کرتے ہیں, ورنہ تو صرف آپ کے کان سنتے ہیں. اور ہدایت سر کے کانوں سے سننے والوں کو نہیں ملتی, دل کے کانوں سے سننے والوں کو ملتی ہے. یہ بات ہم پیچھے پڑھ کر اور سمجھ کر آئے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جس ماحول میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں چاروں طرف ظلم و ستم تھا, پریشانیاں تھیں, لوگوں کو اللہ کی بات سنانا جان جوکھوں کی بات تھی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب نہ نماز فرض ہوئی تھی, نہ روزہ تھا, نہ کوئی پردے کی باتیں تھیں, اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالی نے ان آیات کو نازل کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا. یہ کن لوگوں کی باتیں ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ رب کیا ہے؟ تو رب را با با ہے. تقریباً قرآن پاک میں 1000 ورڈز اس روٹ سے آئے ہیں, آقا, مالک, تربیت دینے والا, پروان چڑھنے والا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کب شعور ہوتا ہے کہ اللہ رب ہے؟ تو اگر آپ تھوڑا سا بچپن سے اپنے اوپر لے کر چلیے تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنا رب سمجھتا ہے, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ جب بھی میں روتا ہوں تو ایک ہی عورت آتی ہے فوراً بھاگتی ہوئی جو مجھے پکڑتی ہے, اور باہر کی دنیا میں باپ ہے جو میرے لیے کچھ چیزیں لاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے نا, کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا شعور ہوا, ایک دو سال کی عمر ہوئی, تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں, صرف ماں باپ نہیں ہے, کچھ اور بھی ہیں, خاندان ہے, بھائی بہن ہے, گھر میں پپھو ہے, دادی ہے, نانی ہے, یہ بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں. تو پھر بچے کے دماغ میں اپنی تربیت اور اپنے پروان چڑھانے کی صورت میں فیملی آنے لگتی ہے. تھوڑا سا جب باہر گیا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں, سورج, چاند, ستارے, ہوا, آکسیجن, یہ چیزیں بھی مجھے پروان چڑھا رہی ہیں. اور اسی طرح سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے انسان کو زندگی میں کچھ اور سہارے دکھتے ہیں. یہاں تک جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو اسکول, استاد, معاشرہ, خاندان, یہ سب کے سب اپنے لیے بڑے اہم دکھتے ہیں, تو اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ان سب کی بہت ضرورت ہے. یہاں تک کا جو سفر ہے نا, یہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے, چاہے کوئی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا ہو, کسی عیسائی, یہودی یا ہندو مت, بدھ مت یا کوئی اور بھی جو بھی مذہب ہے دنیا میں آج کے دور میں, وہ یہاں تک ایک ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک کی ڈیولپمنٹ کو ارسٹڈ ڈیولپمنٹ کا نام دیجئے. غیر مومن کی، غیر مسلم کی سوچ یہاں کے رک جاتی ہے. پھر وہ انہی عناصر کو پوچھنے لگتا ہے. اگنی دیوی آگ کی دیوی کو کہتے ہیں، جل دیوی پانی کی دیوی کو کہتے ہیں، لکشمی دیوی دولت کی دیوی کو کہتے ہیں. یعنی ایسا شخص جو اللہ کو رب نہیں مان پاتا، وہ انہی چیزوں میں کھو کر پھر ان کی پوجا کرتا ہے. اور آج بڑی ہی محتاط بات کروں تو کروڑوں کی صورت میں آج دیوتا ہیں اور ایسے بت ہیں، یا اس شکل میں وہ بت ہیں یا ایک مت ہے، جن کو آج بھی ہندو دھرم میں پوجا جاتا ہے. کم و بیش ہو سکتے ہیں، سارے نہیں پوچھتے ہوں گے، ان کے بھی فرقے ہوں گے، مجھے زیادہ نہیں پتا. لیکن میں نے جتنا کمپیریٹو ریلیجن کو اسٹڈی کیا، یہ چیز وہاں سے میں نے سیکھی تھی، اور پورا ایک ٹاپک ہے جو ہم اپنے کورسز میں پڑھتے بھی اور پڑھاتے بھی ہیں. تو کیا پتا چلا کہ وہاں ہر وہ چیز آپ کا خدا ہے جس نے آپ کو فائدہ دیا. اسی وجہ سے کچھ فرقے گو ماتا پرستی کی بات کرتے ہیں کہ گائے دودھ دیتی ہے تو اس کو پوجو. کسی نے کہا کہ تمہاری ماں تو تمہیں 2 سال دودھ پلا کر چھوڑ دیتی ہے، تو گائے تو ساری زندگی دودھ پلاتی ہے، تو پھر اس کو پوجو. تو پھر گائے اگر دودھ چھوڑ دیں تو اس کو خدا بنانا چھوڑ دیں. یعنی نہ سمجھانے والی باتیں ہیں. آج انہی سارے نیچرل عناصر یا وہ جو ریسورسز تھے ان کو سائنس کا نام دے دیا گیا. لکھئے، کل لوگ آگ، سورج، چاند، سورج کی پوجا کرتے تھے، لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے. کل تک لوگ ان فطری مظاہر کی پوجا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشاہدہ حق کا سفر جو سورت الانام میں ہم پیچھے سن چکے ہیں، کہ اس دور میں بھی سورج کو پوچھتے تھے، کچھ ستارہ پرستی پہ تھے، کوئی کچھ، کبھی کوئی کچھ کہتے تھے. ایسے ہی وقتوں میں ایسے لوگوں کو آپ کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں وہ جگہ سائنس نے لے لی. لیکن اگر آج کے دور میں کوئی نبی آتا تو جو شرک اس کے سامنے تھا وہ سائنس ورشپ کا شرک تھا. سورج یہ ہے، چاند یہ ہے، اتنا گھومتا، ایسا گھومتا، اور پہلے سے دیکھ لو چاند دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا، اور ویگا سٹار کو دیکھ لو، اور گلیکسیز کو دیکھ لو، اور فلاں کو دیکھ لو، اور ان کو دیکھ لو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پیچھے رکے. یعنی کافر یہاں رک جاتا ہے بس، مومن یہاں رکا نہیں رہتا، بلکہ وہ ان کے پیچھے جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ سورج بھی خود مختار نہیں ہے، چاند بھی خود مختار نہیں ہے. آپ 100 سال کا کیلنڈر دیکھ لیں تو آپ کو دکھتا ہے، تو اس کا اندر کہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے نا سورج چاند کو. بس اس کے بعد پھر وہ آگے نکلتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ چیزیں تو خود قوانین میں جکڑی ہوئی ہیں، کوئی ہے جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے. پھر اس کو ہلکا ہار کا خیال آتا ہے. بس یہ ایک لمبی سی ایک جست ہے، ایک چھلانگ ہے جو مومن لگا کر ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی رب تک سب مانتے ہیں. ہر مذہب رب لفظ کو بولتا ہے، یاد رکھیے گا. کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی ربا کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، لیکن اگلا لفظ اللہ نہیں بولتا. لفظ اللہ اور رب دونوں اکٹھے آئے ہیں آپ کے اس آیت میں، اگر آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اللہ کے لفظ پہ سارے جھگڑے ہیں. الالہ، اونلی معبود، اونلی ہستی جس کو آپ دیکھیں، جس کو پوجیں. اور وہ ساری الہ لفظ کی تفصیلات یہاں نہیں بولنا چاہتی جو آپ کو الاسماء الحسنیٰ کے شروع کے 4 دن میں دے دی گئی تھی لفظ اللہ کو سمجھنے کے دوران. 6-7 ڈفرنٹ ڈائمینشن تھی، وہ ذات جو حیران کر دے، وہ ذات جس کو پوجا جائے، وہ ذات جس کے آگے انسان بچھے، جس سے محبت کی جائے. تو اس پہ آ کے لوگ پریشان ہو گئے. رب تک کیسے کوئی اپنی توحید سمجھے حالانکہ لفظ اللہ تھا؟ مومن کہتا ہے نہیں، کوئی ہے جو ایک مجھے بھی پال رہا، میرے ماں باپ کو اور خاندان کو. اور سارا شرک دنیا کا ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو لفظ اللہ سمجھ آتا ہے. ایمان آپ کے دل میں آنے لگتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان 2 طرح کا ہے. ایک پیدائشی ایمان ہے جو آپ کو مجھے ملا ہوا الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ بڑا بلنٹ ہوتا ہے. یہ بس ایسا ہی ہے کہ شروع سے کہہ دیا نام مسلمان ہے، عبد المومن نام رکھ لیا، محمد مسلم رکھ لیا، 2 نبیوں کے نام جوڑ دیے، کہیں اللہ کے نام رکھے. لیکن اصل ایمان جو ہے نا وہ شعوری ایمان ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے شعوری ایمان کی. مومن جب اللہ کو پاتا ہے، شروع میں تو ماں باپ کے کہنے پہ پاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں کوئی بات ہے، دل میں تقویٰ آنے لگتا ہے. اور تقوی کے ساتھ صرف ایک فکر دل کو لگتی ہے، اور وہ کیا کہ میرا رب راضی ہو جائے. زندگی میں انسان بہت سارے لوگوں کو اپنا خالق اور اپنا کہہ لیجئے کہ ضروریات کو پورا کرنے والا پا رہا ہوتا ہے، لیکن جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ یہ سب ہیں ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر سارا شرک ختم ہو جاتا ہے. نہ خاندان کا ڈر رہتا ہے، نہ برادری کا نہ ماں باپ کا، بس ایک ہی فکر ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی تو جگ راضی۔ تو پھر وہ جو ربنا اللہ والی بات ہے نا، یہ ایک ڈسکوری ہوتی ہے۔ آج بھی اس کو وہ سمجھے جنہوں نے اللہ کے لیے کوئی دین چھوڑا ہے، ریوارڈز۔ پھر کوئی رستے کی رکاوٹ نہیں رہتی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پھر انسان کسی قسم کی دھمکی سے نہیں ڈرتا، مصبن و مہر کو سمجھ لیں، کسی قسم کی پرسیکویشن سے نہیں ڈرتا۔ آپ حضرت بلال کے اس سارے معاملے کو سمجھ لیجئے۔ پھر اس وقت انسان کو یہ بات ساری سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ میں کیسے ان ساری چیزوں کو لے کر چلوں، اور یہ ساری وہ چیزیں کہ جو ایک انسان کی زندگی میں پھر اللہ کی ضرورت کو لاتی ہیں۔ پھر سب سے بڑی ہستی انسان کے لیے اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، اور ایمان لانا بھی بڑی بات تھی۔ اس کے بھی رستے کی رکاوٹیں کچھ لوگ دور کر لیتے ہیں۔ اصل چیز جس کو یہاں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ثم استقامو۔ اگر آپ میرے دو تین جملے لکھ لینا اس وقت، ساری چیزوں کو خطا چھوڑ کے بیٹھ کر لکھ لینا، تو آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کو رب سمجھنا پہلا درجہ ہوتا ہے، لکھئے۔ آپ کا دل اس چیز پر مائل ہو جائے کہ رب کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، اس کو اللہ مانے بغیر میں رہ نہیں سکتی، دوسرا درجہ ہوتا ہے پھر اس کا اظہار کریں، شہادہ۔ پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بھی کہنے کو تیار ہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتی ہوں۔ بی بی آسیہ کی مثال آپ پڑھیں گے آگے 28 پارے میں بھی، اور پیچھے بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ کو رب ماننا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ بہت سارے، کیا سارے، بلکہ فرعون تک اس کو مان گیا تھا، ابو جہل تک مان گیا تھا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا، اس پہ آ کے زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن ابئی نے کہا تھا لیکن اوپرے دل سے، ابو جہل کہہ نہیں سکا کیونکہ بڑا ہی جرات والا تھا۔ ابو طالب نے کہا نہیں کیونکہ وہ خاندان سے ڈر گئے تھے، برادری سے ڈر گئے تھے۔ لیکن عبداللہ بن ابئی کہہ چکا تھا لیکن دل نہیں مانا۔ اظہار کے بعد جو تیسرا اور آخری درجہ نا، وہ ثم استقامو کا ہے۔ یہ تو پیدائشی مسلمانوں کو بھی نہیں نصیب ہوتا، اللہ ہماری انگلی پکڑ لے۔ استقامت میں قیامت ہے، اور جہاں یہ آیتیں اتر رہی تھی وہاں نہ نماز، نہ روزہ، نہ پردہ، صرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ بلال کو کوڑے پڑتے تھے۔ اور آج بھی آپ 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں، تسبیح پکڑ لیں 1000 دانے کی اور بیٹھ جائیں کسی جگہ چوراہے پہ پڑھیں، کوئی مخالفت نہیں، کچھ نہیں کوئی کہے گا۔ ہو سکتا ہے لوگ پانی کی بوتلیں لے کر آ جائیں کہ لو بھائی ذرا دم کر دو، دم کروانے کے لیے لوگ آ جائیں گے، لوگ آپ کو نیک سمجھیں گے۔ لیکن جہاں عملی طور پر آپ اللہ کو رب بنانا چاہیں گے، اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی بھی ماننے کی خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے مرضی کا بننا چاہیں گے، تو سب لوگ پریشان کریں گے آپ کو۔ پھر مشکلات کی ایک ناختم ہونے والی چین شروع ہو جائے گی۔ آپ جب اپنے گھر میں دین کو نافذ کرنے کی بات کریں گے تو استقامت کی ضرورت پڑے گی، مشکلات ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی۔ اور یاد کر لیں سورۃ مائدہ کی آیت، ولا تخافون لوم تلائم۔ مخالفت باہر سے آتی ہے، ملامت گھر سے ہوتی ہے، لوگ اپنا بن کر آپ کو اللہ سے ناراض کریں گے، اللہ سے دور کریں گے۔ آپ سود کے خلاف بات کیجئے، پھر دیکھیے ذرا ہوتا کیا۔ آپ ذرا پردے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے۔ آپ سیگریگیشن کی بات کیجئے، آپ رسم و رواج کو پیچھے ڈال کر سنت طریقوں پر اپنانے کی بات کریں، پھر گھر میں گڑبڑے ہوں گی۔ یہ سمست کاموں کا درجہ بڑا مشکل درجہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا دین سٹیگنٹ دین نہیں ہے، ڈائنیمک ہے۔ سٹیگنٹ کہتے کھڑا پانی، آپ کہتے کھڑا پانی ناپاک ہوتا ہے جب تک اس کی کوانٹیٹی ایک خاص حد تک بڑھ نہ جائے۔ ہمارے دین میں ایک تحریک ہے۔ اللہ کے نبی جس دور میں لوگوں کو یہ آیات سنا رہے تھے نا، تو دلوں میں جب ربنا اللہ بیٹھ جاتا تھا نا، تو وہ جا کر سو نہیں جاتے تھے، یا مکہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تسبیح پکڑ کر پڑھنا نہیں شروع ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہی ہے۔ آج ہم پیدائشی مسلمانوں نے سوچ لیا کہ قرآن کے ساتھ ایک رسمی تعلق، صرف رسمی، شعوری نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنے مظاہرے ہیں آج ہمارے دین کے نام پر، دین پہ۔ کوئی ہم خدا چھوڑے بیٹھے لوگ ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ ماہر القادری صاحب کی وہ پوئم یاد کر لیں جو آپ سب نے سنی ہوگی، کہ قرآن کی فریاد، ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथ उठाया जाता हूँ, कस्में दी जाती हैं, हर बस में मेरी धूम है। हर जगह कुरान है। इवन मुझे तो इतना पता है कि हमारे मुसलमान मुल्क के हुक्मरान जब कोई स्पीच करते हैं तो उससे पहले भी कारी शाकिर कासमी साहब जैसे कोई लोग आके चंद आयते तिलावत करते हैं। आप किसी दुख सुख के वक्त पे कुरान खानी करता लोगों को देखते हैं। आप मिलाद के नाम पर नबी सल्लम पर दुरूद पढ़ता सलाम पढ़ता देखते हैं। हमने छोड़ा नहीं हुआ। लेकिन मसला क्या है? क्या आप कुरान खानी करें? कोई मुखालफत नहीं, क्योंकि एक लफ्ज़ तो समझ नहीं आना न पढ़ने वालों को न पढ़ाने वालों को। हाँ, आप कुरान की स्टडी करें, आप कुरान सीखें, और जब कुरान सीखें तो डायनेमिज्म है, फिर आप नहीं बढ़ सकते। आंखों देखा जहर कोई नहीं खा सकता। खाने में मक्खी गिर गई, नहीं पता चला खा गए, देख ली मक्खी, फिर नहीं खाई जाती। जब कुरान को आप तालीम के तौर पे पढ़ते हैं, इल्म लेते हैं, जिसका एक मुख्तसर सा ये तजुर्बा हम रोज अपने दिल की जमीन पे करते हैं, फिर मुखालफत होती है। ये क्या हो गया, तुम क्या पढ़ने लगी? और जब आप कुरान की जुबान से देखते हैं तो दुनिया तो कुछ और ही है। तो फिर कभी कभी जल्दी में तनकीद शुरू होती है तो घरों में झगड़े। आप नबी के रसूल होने की बातें करें, आप दुरूद पढ़ें, आप एक से एक बढ़कर नाते पढ़ें, कोई हर्ज नहीं। स्टैटिक रिलीजन है, सब ने एक्सेप्ट किया हुआ है। बल्कि नात तो प्यारी बड़ी लगती है, मुझे खुद बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी आवाज में खूबसूरत नात पढ़ी हो, बगैर म्यूजिक के, बगैर शिर के हो, आज भी दिल पे उतरती है, कोई हर्ज नहीं। पर अगर आप एक सुन्नत जिंदा करें तो फिर आपको समस्त कामों की जरूरत पड़ेगी। सबको ऐसे लगेगा कि पता नहीं आपने क्या किया, फिरों के छज्जे में हाथ डालने वाली बात है। फिर कैसे लोग खफा होंगे, फिर कैसे धमकियां मिलेंगी? और एक वक्त आता है कि आप तन्हा रह जाते हैं, फिर आपको महसूस होता है ये क्या हो। और याद रखिए कि ऐसे वक्त में वही अल्लाह को मानेगा जो अल्लाह को रब होने का, रब समझने का तकाजा पूरा करेगा। और इसमें मुखालफत होती है, होगी, आपकी भी होगी। अगर नहीं हो रही ना तो ईमान ही सच्चा नहीं, या तो उस दर्जे का नहीं है या फिर ठीक नहीं है। सच्चे ईमान के बाद जरूर मुखालफत होती है। ऐसी कि जैसे किसी के घर की बुनियादें टेढ़ी हो गई, खबर मिल गई कि बुनियाद टेढ़ी है, घर गिर जाएगा, तो आप उस बुनियाद को सीधा करने के लिए जब घर गिराएंगे तो मलबा उठेगा, शोर उठेगा, बिल्डोजर चलेंगे। आज हमारे खानदानों की, दीन की बुनियादें टेढ़ी बुनियादों पे हैं, ख्वाहिशात पे है। चलो तुम इधर हवा हो जिधर, नतीजा क्या निकलता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। फिर जब आप कुरान सुनते हैं दुनिया और क्या, आंखें नहीं रोती? नई नई कुरान पढ़ने वाली बहनों को मैं देखती हूँ, रोती रहती हैं कुरान की महफिल में। और कुछ पे मैसेज करते हैं, हाय हमें तो लगता है हम सारी गलत हैं, हाय हमारा तो सारा खानदान दूसरी तरफ है, कुरान कुछ और है, मुसलमान कुछ और है। तो जब ये सब होता है तो फिर समझ आती है कि मैं किधर हूं, इस्लाम क्या चाहता है आपसे, कि वो वहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारी, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। और अभी पीछे सुरान कबूत पढ़कर आए, हसी बन ना सही युतरकु यकूल आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। जब ऐसे वक्त में दीन के नाम पे आप रुलाए जाएं, खपाए जाएं, तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर फरिश्ते उतरते हैं, फिर वो खुशखबरियां देते हैं, अल्लाह तखाफु, खौफ ना खाओ, मुस्तकबिल का बिल्कुल अंदेशा ना करो, वला ताहज़नु, और जो पीछे हो गए उसको गम न समझो, वो फाहे रख लो अपने दिल पे, गुनाह किए, गलत काम किए, नाफरमानियां, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें माजी के गमों से, माजी के दुखों, माजी के गुनाहों से बेनियाज कर देगा। वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुशखबरियां दे दो उसको उन जन्नतों की जिनके तुम वादे किए जाते थे। ये फरिश्तों के नजूल की बातें हैं। तो सवाल पैदा होता है कि फरिश्ते कब उतरते हैं? एक बड़ी कॉमन और आम फहम बात तो आप सभी जानते हैं कि फरिश्ते मौत के वक्त उतरते हैं। अपने अक्सर दुनिया से जाने वाले और खासतौर पर वे बुजुर्ग जो बड़ी नेकियों की जिंदगी गुजार जाते हैं, बल्कि मैं अगर ये बोल दूं कि इस्तकामत के दर्जे पे जिंदगियां गुजार जाते हैं ना, उनको उनको आपने ये कहते सुना होगा, वो आए हुए हैं, बिठाओ उनको, सलाम करें, अम्मी आई है, अब्बा आया है। ये जो मौत के वक्त भी छोटी छोटी बातें हैं ना, ये फरिश्ते होते हैं। तो एक वक्त जो हमारे यहाँ बड़ा नून है, मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं जो हमारे लिए काबिले कबूल है। हम सहाबा कराम की बेशुमार आपको बातें मिलती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने बच्चों को फौत होते वक्त कहते हैं कि बेटा मुझे पुरानी चादरों में कफन देना, और चुपके से फिर कहते हैं कि वैसे और नई चादरें तो जिंदों के काम आएंगी और चुपके से कहते हैं कि वैसे तो ये थोड़ी देर में उतर ही जाएंगी। आप पढ़िए आखिरी घड़ियां, आखिरी लम्हात, किताबें पढ़ाई हुई हैं इससे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिंगापुर से एक बुक मैंने पढ़ाई थी, छोटी सी बुक थी, वो भी जिंदगी की आखिरी तस्वीरें, बहुत फायदा उठाया लोगों ने। मरते वक्त लोग क्या कहेंगे पढ़कर देखिए, बड़ी रकायकुल कल वाली बुक है। इसके बाद फरिश्ते आते हैं तो कब्र में आते हैं, ये भी हमारे यहां नोन है। हदीस में आता है कि अभी मौत फरिश्ते मुर्दे को भी तुम दफना कर हटते भी नहीं तो फयात यानी मलक आनी फयुजलिसानी, दो फरिश्ते आते हैं फिर उसको बिठाते हैं, तभी तो कब्र ऊंची रखी जाती है। हमारा ईमान है कि कब्र में मुर्दे को जिंदा किया जाता है। अब वो कैसा है क्या होता है ये मेरे आपके इदराक में नहीं है। तो वो मन रब्बू का, मन रसूलू का, मां दीनू का, फरिश्ते उतरते हैं। फिर आप सूरह कौफ आगे पढ़ेंगे 27वें पारे में, 26वें पारे में आएगी, 26 पारे में सूरह कौफ में आप पढ़ेंगे कि मौत से बाद कब्र जहां सारे मामला के जू ही क्यामत आएगी तो क्यामत के दिन जब बाहर निकलेंगे तो दो फरिश्ते खड़े होंगे बाहर, शायक और शहीद उनका नाम है, शहीक भी आता है हा? तो मौत उस वक्त भी है और फरिश्तों का साथ आगे तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जहां कौन से फरिश्ते हैं, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, ये दुनिया में फरिश्ते हैं, तो दुनिया में भी फरिश्ते उतरते हैं, ये मुस्लिम बिलीफ है। कब कहां उतरते हैं, अगर आप इसको सीरत से ले लीजिए तो जंगों में उतरते थे, ग़ज़वे बदर, उहद और हुनैन और बाकी जंगों के नाते से आप कुरान में पढ़ते आते हैं, फरिश्ते उतरते थे। साहबा कहते हैं हम तो नहीं तलवार उठाते थे लेकिन एक काफिर की गर्दन कटी हुई गिरती थी, और मैदान बदर के बाद लोगों ने कुछ लोगों के जिस्मों पे जख्म जलने के निशान देखे तो हैरान हो गए, अल्लाह के नबी हमने तो आग नहीं देखी इधर, तो कहा फरिश्तों की मार है। लोगों ने आवाजें सुनी, हैजूम जल्दी चलो, कहा अल्लाह के नबी हैजूम कौन है, कहा जिब्राइल के घोड़े का नाम है। फरिश्ते आते थे, आज भी आते हैं जी। कब आते हैं, जब आप इस्तकामत के दर्जे पे यानी अल्लाह को रब कहते हैं ना, तो आपको तो हर वक्त फरिश्तों की मायत मिलती है। नेकियां करते वक्त, जिंदगी में मुश्किलात के वक्त, और दीन के इल्म की महफिलों में फरिश्ते होते हैं। आपने वो फरिश्तों की हदीस सुनी हुई है, सैयारा कहते हैं ऐसे फरिश्तों को, इन्ना लिल्लाही, कुछ लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हैं, सैयारा चलते फिरते हैं, और जहां इल्म की कोई महफिल होती है वहां आ जाते हैं और अपने परों से उस जगह को ढांप लेते हैं, फिर जाके अल्लाह को खबर देते हैं फलां ये कह रहा था, वो जन्नत मांग रहा था, वो जहन्नम मांग रहा था। हदीस आपने सुनी, वे नहीं सुनी तो इंशाल्लाह अपने सबीलुल जन्ना कोर्स में आप शुरू में सुन लेंगे जब आपको इल्म की बातें बताई जाएंगी। तो वो फरिश्ते तो उतरते हैं, इसी तरह से दीन के काम करने वालों पर भी फरिश्ते उतरते हैं। और ये कैसे पता चलता है, आपको थकन नहीं होती, और अगर थकन भी हो ना तो दिल में खुशी होती है। आप सारा हफ्ता दीन के पीछे भागे, इल्म सीखे, इल्म सिखाएं, आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, आपको कोई थकन नहीं होती। घंटों बोल लें कोई थकन नहीं, घंटों सुन लें कोई थकन नहीं। मुझे जो स्टूडेंट्स है वो रोज हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी स्टूडेंट कहता है आप और बताया करें, हम अभी और भी सुन सकते हैं, आप क्यों फिक्र का, बार बार क्यों कहती है मैं वक्त ऊपर लेती हूँ। ये स्टूडेंट्स होते हैं जो माशाल्लाह आदि हो चुके होते हैं, वो उनको ये फरिश्ते बुलवाते हैं, थकन नहीं होती, वक्त का एहसास नहीं होता। और अभी बेचारे जो हमारे नए हैं जिनको आप अलकल्ब बाकी सनील हिदाया के, उनको एक डेढ़ घंटे के बाद शायद थकन हो, कोई बुरी बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, दोबारा सुन लीजिएगा। तो आपको फरिश्ते फिर नेकियों के कामों में एक तो तसलियां देते हैं, आपके दिल में इरादे उठते हैं, मजीद काम करने का शौक उभरता है। ये जो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं ना, ये आपके नहीं होते, फरिश्तों के होते हैं। आप प्लान्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके दिल में। मैं तो कहती जिस बंदे के दिल में नेकियों के और प्लान्स के और अपने कामों के आइडियाज नहीं उभर रहे ना, तो अपना चेकअप करवाए डॉक्टर को। आप कपड़ा सीने बैठते हैं आपको 10 आइडियाज नहीं आ जाते, ये फूल इधर लग जाए, ये मोती लगा लूं, बेल लगा लूं। खाना पकाने इफ्तारी में खड़ी होती हैं आप, दो सोचकर खड़े होते हैं, चार डिशेज बना के उठते हैं, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे मदद नहीं आएगी। दूसरों के चलाने पे कौन चला, आपका दिल आप किसी और के हाथ में दे दें तो वो कब के फौत हो चुके थे हम, ये तो आपको खुद उठना होता है। आपके दिल में इरादे, इनिशिएटिव, मैं ये करूं अल्लाह मुझसे ये करा। आप वीकेंड पे चार दावतें खा पका कर आए ना, जुम्मा हफ्ता इतवार और इतवार को भी दो, थक टूट के आप मंडे की क्लास में आके बैठते हैं। थकन हाय गोडे गिट्टे रह गए, फिर भी करते हैं। दीन के काम में कोई थकन नहीं और अनथक काम करते मैंने लोगों को देखा है। मैं तो नहीं हूं ऐसी मजबूत, लेकिन मैंने अपने साथियों को देखा है और कोई थकन नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई ये बड़ापन नहीं कि हमने ये किया। कभी मैं किसी से पूछूं भी ना कि जब कोई काम पूरा होता है तो क्या लगता है अल्लाह ने आपसे लिए, वो कहते नहीं अगले काम पे नजर होती है, कंधे नहीं थपथपा, वो ये नहीं कहते हमने इतना कर लिया और कितना भाई, जितनी औकात है जितनी हैसियत है आखिरी दम तक करेंगे, जब हम थक जाएंगे तो हमारे बच्चे तैयार हो चुके होंगे। ऐसे लोगों को फरिश्ते जमा देते हैं, डटे रहते हैं, फिर इस रस्ते में सब कुछ दांव पे लग जाता है। मोहब्बतों को दांव पे लगा देते हैं, रिश्तों को दांव पे लगाते हैं। मिसाल बीबी आसिया की, फर्स्ट लेडी थी अपने दौर की, फिरौन की चहेती बीवी। फिरौन ने ताने देने शुरू कर दिए, धमकियां देनी शुरू कर दी कि तुझे मैं सूली पे चढ़ा दूंगा, कहा जल्दी कर, रब इब्नी लींदा का भाई तनसिल जन्ना। इस्तकामत थी बीबी सुमैया, बीबी आसिया को इतनी मजबूत औरत थी, उसने कोई आपकी मेरी तरह पिछले 23 दिन में कुरान सीखा था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये फरिश्ते होते हैं। बीबी सुमैया का नाम लिया तो पहली शहीदा इस्लाम की। अबू जाहल जिस्म पे तीर मार के जिस्म को दो टुकड़ों में बांटता है, लेकिन कहने वालों ने और देखने वालों ने कहा कि बीबी सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आज भी जो लोग दुनिया से जाते हैं, मेरी अपनी आंखों में कुछ चेहरे आते हैं, स्माइल, ठंडक। आप जब अल्लाह के बनने लगते हैं ना तो शौहर धमकी देंगे आपको, वो सारी मोहब्बतें वापस लेंगे, ले लूंगा वापस। आप कहते हैं अच्छा कोई निकाल लेंगे, इनकी मैं मजबूरी हूं। फिर वो कहेंगे मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कभी किया आज तक? अल्लाह का शुक्र है आपके सर ने तो नहीं की। अगर आपको गिला किसी को तो मेरे मियाँ को आकर देख लीजिए, अकेले में उनसे पूछ लीजिए, सब चीजें साथ चलती हैं। मैं तो इतना करती नहीं, उनको मौका ही ना मिले शायद, लेकिन जो करते हैं मैंने बहुत काम करने वालों को देखा है। ये झूठा है, धोखा है, दीन के साथ सौतेलापन है आपका, कि अगर आप ये कहते हैं कि आप दीन पे काम करें, दीन के काम करें, तो शौहर शादियां कर लेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ड्रग्स हो जाएंगी। जाकर देखिए जिनके बच्चे ड्रग एडिक्टेड हैं, क्या वो दीन का काम कर रही हैं औरतें? आप शाम को निकली इधर लिंदेबर्ग से, जाइए हेवरोतन, आपको कोनों गलियों में लड़के और लड़कियां खड़े दिखेंगे। मैं खुद कल तो नहीं, इससे एक रात पहले देख चुकी हूं ऐसे टोलियां। और हमारी मुस्लिम बच्चियां, वल्लाही मेरा दिल ऐसे लग रहा था कि उछल के बाहर आ जाएगा। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से बच्चियों के ग्रुप्स देखे और जो उनके हाल हो लिए और जो उनके तरीके, रमजान की रातें हाथों में बोतलें पकड़ी हुई, तो मुझे तो वो आप में से किसी की अल्हम्दुलिल्लाह बेटी नहीं दिखी जो क्लासों में आती है। क्या बच्चियां बच्चे उनके बिगड़ते हैं? धोखा है ये। जब आप अल्लाह के बनते हैं, अल्लाह आपका बन जाता है, फिर इंसान में इतनी ताकत आ जाती है, वो कहता लेते हो तो ले जाओ, फिर कर लें आप भी जो करना है कर लें। और ये जो ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका की बात है ना, ये अल्लाह तखाफु वला तहज़नु से जुड़ी हुई है। आप कह लीजिए कि दिल पर आंसू भी गिरते हो ना, लेकिन खुशी के साथ होते हैं। बाहर की दुनिया में एक शोर होता है, मामा को क्या हो गया, बेगम किधर चल पड़ी, ये बहू किधर चल गई, लेकिन अंदर एक खामोशी, वही परसों वाला लफ्ज याद रखें, पुरसुकून किस्म का गम, इत्मीनान। जो बच्चे को इंजेक्शन लगता देखकर मां को लग रहा होता है कि चलो रो तो रहा है लेकिन ठीक हो जाएगा, इसको वैक्सीनेशन कर दिए। दे फेस ऑल ऑड्स, जिंदगी के सारे अप्स एंड डाउन ऑड्स, गैर मुवाफिक हालात को वो खुशी से फेस कर जाते हैं, और भी कर लेंगे। पहले इतने कमजोर होते हैं हम खवातीन तो पहले ही कमजोर ही हैं, शौहर मेरी मजबूरी है, ससुराल मेरी कमजोरी है, मैं बातें नहीं सुन सकती, मैं तो बहुत वीक हूं, मैं तो बस इनके लिए जीती हूं। एकदम रब्बुनल्लाह कहने के बाद जब आप इस्तकामत पे आते हैं ना, तो आपकी शख्सियत में एक इनकलाब आता है, आपकी एक नया जन्म है, रियली एक नई जिंदगी। आप अपनी उम्र का हिसाब लिखा करें तो उस दिन लिखें जिस दिन ये इनकलाब आ गया। और फिर आप, वो कहते तुम्हें क्या हुआ, ये फातिमा कौन थी आपको पता, उमर की बहन, कहने लगे तू तो आज तक बोली नहीं, आज कैसे बोली? क्योंकि ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, सुहबते मलाइका मिल जाती है, ये आपको मजबूत करती है। फिर इंसान अपने मकसद पर ठुक जाता है, फिर उसको यकीन आता है जिस कॉज के लिए मैं लड़ रहा हूं ये सच है, फिर दिल से शक शुबा खत्म होता है, अपने लीडर्स पे शक सोच नहीं सकता, बंदे को गुनाह लगता है, अपने साथियों की नियतों पे शक नहीं करता। इख्तलाफ हो सकता है, बात छोटी बड़ी, किसी की अच्छी बुरी, पर ये नहीं कह सकता इंसान की उनकी नीयत ठीक नहीं, वो खराब है, वो खोटे हैं। खोटे वैसे ही निकल जाते हैं, याद रखिए, या तो मजबूरियों से कुछ जाते हैं, कुछ खोटपन से जाते हैं, और फिर अल्लाह आपको ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है। हदीसें पढ़कर देखी, ईमान और आजमाइश, मैंने पहले भी जिक्र किया था, मेरा फेवरेट टॉपिक है अल इब्तलाउ वल ईमान। जितना ज्यादा गहरा ईमान उतनी ज्यादा बड़ी आजमाइश। अल्लाह के नबी ने कहा सबसे ज्यादा आजमाइशें नबियों पर आई, फिर उसके बाद जो जितने ईमान वाला होगा। जितना हमारा ईमान कमजोर है उतने ही हम छोटे। आप एक कील दीवार में ठोकना चाहें, आप एक साल तक उस कील को दीवार पे प्यार प्यार से मसलते रहे, नरम नरम उंगलियों से सहलाते रहे, नहीं जाएगा अंदर। एक दफा हथौड़े से ठोकना पड़ेगा। जब तक मुश्किल नहीं आती, आजमाइश नहीं आती, ईमान का दावा ठुकता नहीं है। अल्लाह आपके मेरे दिल में इस ईमान को ठोकता है ताकि इस्तकामत आए। आप तो एक घड़ी ना लगाएं हिलते हुए कील पे। अल्लाह आपको मुझे अपनी किताब दे दे, अपना काम दे दे, कच्चे लोगों को आप अपना नाम दे दें, ये कैसे हो सकता है? बदनामियां करवाएं, दीन को बुरा करें, और आज ये हो रहा है। कच्चे पक्के अधूरे दीन के साथ ये पकड़ उधर से ले उधर से लेके अपने करके, और सबसे बड़ी बात है उसमें नाम लगा देंगे किसी इदारे का, पता भी नहीं लोगों को, क्या पता, जालसाजी है ये। किसी की इजाजत के बगैर आप उसका स्लोगन लगा दें, आप उसका नाम यूज करें। आप आइए, बिस्मिल्लाह, आपको दोनों हाथों से वेलकम करते हैं अच्छे लोग। कोई नहीं कहता कि सब चाहते हैं सदका जारिया हो, लेकिन काम तो ठीक हो। तो अगर आज तक आपको ईमान के दावे के बावजूद मुश्किल नहीं आई तो चेकअप करवाइए। फिर जब ठुक जाता है ना बंदा, तो फिर बड़े बड़े काम करता है। और बड़े बड़े कामों से मेरा ये नहीं कि बड़ा मशहूर होता है, हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी मुसीबत है। बड़े काम उनके हैं जो बड़े फेमस है, जिनको बहुत जानते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स इतने, और वो स्क्रीन पे आते और देखो देखो अब तो इतनों ने आज सुन लिया, क्या ये बड़ा काम है? नहीं, लिखिए बड़ा काम ये कि फमन जुख्तिहा निन्नारी वउदखिलल जन्नत फकद फाज। ये है बड़ा काम कि आपको कब्र में जाने तक तो जो भी मुश्किल आ गई सो आ गई, लेकिन आपको कब्र में जाने से पहले ही खुशखबरियां मिलने लग जाएं कि आ जाओ और नम का नौमत लरोज, रब राजी हो जाए और आपको जन्नत मिल जाए, और बगैर जहन्नुम के ऊपर से गुजारे आपको जन्नत मिल जाए, फिर इस्तकामत आएगी। और याद रखिए आजमाइशें साथ साथ चलेंगी। आपने कभी लस्सी बलोते हुए देखा हो, जब लस्सी को बलोया जाता है ना, दूध या दही को, तो फिर उसके ऊपर मक्खन आता है। जब आप अल्लाह ताला को रब कह देते हैं ना, तो फिर बलाओं की बलवानी चलती है, फिर अल्लाह आपको बलोता है, बलोता है, बलोता है, हत्ता के ईमान का मक्खन ऊपर आ जाता है। और साहबा इसकी चलती फिरती मिसाल थे। कभी आप साहबा को काम करते देखा करें, ऐसे वो खंदक खोद रहे थे जैसे आज कोई अपने घर में बारबेक्यू करने के लिए मर्द कोयले जला रहे हो कि आज इफ्तारी में बारबेक्यू कराना है दोस्तों को। हंसी मजाक, कभी एक दूसरे पे खरबूजों के छिलके फेंकते, कभी कुछ, कभी प्यार से। एक साहबी जाकर पीछे से दूसरे को उठा के धकड़ता है, कोई है जो मुझसे ये गुलाम खरीद ले? ओ तुम, अरे वाह, हा हा हा, दिल खुले होते हैं उनके, छोटी छोटी बातों पे रूठे नाराज, और हर वक्त इस गम में कि मुझे किसी ने ये क्यों कह दी। भाई कह दिया, कहते हैं, हमारी बहनें थोड़ा कहती हैं हमें, माँ को तो जरा देखें, आज तक मेरा ले जो आपको डांट सकता है वो आपकी माँ ही है, पूछ, मैं खुद कह सकती हूँ इस बात को। तो अल्लाह ताला सहाबा के दिलों में डालता था, लेकिन जब कुफर और इस्लाम की जंग होती थी तो कुफर की आंखों में आंखें डालते थे। रोहमाऊ बैन्ना हूँ वशिद्दौलल कुफर, फिर वो नरम चने नहीं थे कि चबा लिए जाए, सुरफत में आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। तो लिहाजा सारी बात का खुलासा क्या है आपको मुझे, आज जिस चीज पे पूरे पारे में नजर रखनी है वो लफ्ज इस्तकामत है। फिर अब शुरू बिल जन्नत इल्लती कुंतुम तुअदून होगा। ये जो जिंदगी में आप पे आजमाइशें आती हैं और आप उसकी वजह से पलट जाते हैं ना, कभी वो पलटे ना होते तो वो हीरे मोती होते, ये भी लिख ले। आप में से हर उसके ऊपर ज्यादा आजमाइशें आएंगी जो जितनी दूर से पलट कर आएगा। चार लेन होती है अमेरिका में मोस्टली, यहां तो एक या दो होती है ना, यूरोप में रोड चौड़ी कम है। आपको फोर्थ लेन से एग्जिट लेना हो तो कितने इंडिकेटर दे देकर आप फिर सबसे ज्यादा आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, और जो पहली लेन में खड़ा है उसको तो एक इंडिकेटर देना है। तो अगर आपको वाकई ज्यादा मुखालफत सहनी पड़ रही है ना, तो मुबारक हो आपको, آپ کا مقام زیادہ ہے. صحابہ کی جو سب سے بڑی نیکی اللہ نے دیکھی نا, وہ یہی دیکھی تھی, مخالفتوں میں سے نکل کر ربنا اللہ کہہ کر جم گئے, ٹھک گئے. کبھی بہت کم نماز روزے کی ذکر ہوگا, وہ بھی تھی. وہ نہ ہو تو یہ ہوتی بھی نہیں. یہ بھی بتا دوں, ایک شخص نے دیکھا کہ ایک تتلی ہے اور اس کے انڈے میں سے اس کا بچہ نکل رہا ہے, اور وہ اتنی باریک سی جگہ میں سے نکلنا چاہ رہا ہے, نکلنا چاہ رہا ہے کہ وہ بےچارہ پریشان ہے. اس کو بڑا ترس آیا, اس نے جا کر اس انڈے کا چھلکا توڑ دیا تو دھرم کر کے بچہ باہر آ گیا. وہ بڑا خوش تھا کہ میں نے اس تتلی کے بچے کی مدد کر دی. لیکن آپ کو پتا کیا ہوا, وہ ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہوا. فطرت کا اصول ہے کہ بچہ تتلی کا جب اس چھوٹے سے پیوپا یا وہ جو بھی اس کا ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے نا, تو اس کے پروں میں ایک جیل ہوتا ہے جو اس کو اس سارے پروسیس میں, جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کے ارد گرد کچھ لیکوڈس ہوتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. تو وہ بچہ تتلی کا جب نکلتا ہے نا, تو وہ تنگ جگہ سے نکلتا ہے نا, تو ساتھ ہی ساتھ پر نچڑتے جاتے ہیں, نچڑتے ہی جاتے ہیں, اور جب باہر نکلتا ہے تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے, ایک دفعہ پر جھاڑتا توڑ جاتا ہے. اس شخص نے مدد کی لیکن وہ ہینڈی کیپ ہوا کیونکہ وہ جیل اندر تھی. آپ اپنے بچوں کو اتنے لاڈ نہ دیکھیں ان کے, اتنا نرم نازک سینسٹیو نہ کر دے کہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں بندے رہ جائیں. اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, پھر آپ خواب دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں جنت کے. اب شروع بل جنت اللتی کن تم تو دون. کبھی آپ نے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا, اب تو مجھے کوئی روایتی تصور ہی نہیں آتا ذہنوں میں, لیکن جب ہمارے دور تھے پہلے خواب دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں لڑکیاں, شادی ہوگی, یہ کپڑے پہنوں گی, ادھر جاؤں گی, دھڑکا ہوتا ہے ہائے کچھ ہو نہ جائے, ہائے شادی آگے نہ ہو جائے. تو پہلے سے خواب دیکھیے. اور ایک جملہ آج کا سب سے بڑا جم ہوگا, اپنی کوشش سے جس مقام پر میں پہنچ سکتی ہوں وہ استقامت کا مقام ہے. اسی پہ ہے پھر جنت اور جنت الفردوس اور پھر بڑے بڑے جنت کے درجے اور سابقون الاولون. یہ اللہ نے آپ کے میرے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ جتنی کوشش کریں گے اتنی استقامت دے گا, اور پھر صحابہ کی طرح سب سے محبت کریں گے, حق ادا کریں گے, لیکن اللہ کا حق ان کو نہیں دیں گے. اور پھر اس طرح سے شروع میں مشکل لگے گا, آہستہ آہستہ آسان ہوگا. لوگوں کے آپ چاہیتے ہیں, لوگ آپ کے چاہیتے ہیں. باہر کی دنیا میں سوشل بائیکاٹ ہوگا, لیکن اندر تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتوں سے دوستیاں ہوں گی. اور اتنا اس جنت کو آپ سوچ لیں گے, سورت محمد میں ہم 26 بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ جب جنتی جنت میں آئے گا تو ارفہا, پھر پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے استقامت عطا فرمائے. یہ چند باتیں تھیں استقامت سے متعلق. آئیے کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی دہرا لیتے ہیں. استقامت کا لفظ قام یقوم سے استقامت ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. طریقہ آپ کو میں نے اس کی ڈیفینیشن دے دی, ہی سلوک کو طراق المستقیم وهو الدین القیم من غیر تعریض عنہ یمنتا و یسرتا و یشمل ذالک فعل الطاعات کلھا الظاہرۃ والباطنۃ و ترک المنہیات کلھا کذالک. یہ ہے وہ جملہ جو آپ کو اردو میں لکھ دیا, جس کے خلاصہ کیا تھا کہ اللہ کے کہے ہوئے پہ عمل اور جس سے روکا اس سے رکنا. یہ دو لفظ بس ہے. تو استقامت حسب استطاعت اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرنا, اور اللہ کے روکے سے رک جانا. اسی میں اللہ اور رسول کی بات ہے. اور ڈکشنری میں جو استقامت کے آپ کو مختلف لفظ بتائے, اس میں استقامت میں ہی قیامت ہے. جب اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو پڑھاؤں گی تو لفظ قاف و میم کو ہم کھول کر دیکھیں گے. اس میں قوم ہے, برادری ہے آپ کی میری, اور بڑا کچھ. اسی میں قیامت ہے. اور سب سے زیادہ روٹ ورڈ ڈفرینٹ لفظ جو آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اسی لفظ سے مختلف لفظ جو آتے ہیں, دیکھنے میں مختلف لگتے ہیں لیکن وہ سارے آپ کو اس میں دکھتے ہیں. اور خط مستقیم کی طرح سیدھے ہونے کی بات بھی آپ نے دیکھ لی. سوال کیا ہے کہ استقامت کا فائدہ کیا دنیا میں ہوتا ہے کہ آخرت میں؟ استقامت کا آخرت میں فائدہ صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کی گئی ہو. جیسا کہ کسی بھی کام کے ذریعے آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ کام صرف اور صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا جائے, اللہ پاک کی رضا پانے کی نیت سے کیا جائے. تو آپ ساری زندگی بھی کام کرتے رہے لیکن نیت دل میں کچھ اور ہو تو فائدے سے زیادہ کہیں جواب دہی نہ ہو جائے. یا ایسے ہی ہے کہ کسی جگہ سے گزرتے ہوئے ٹول دیتے ہیں نا لوگ, تو وہ ٹول سارا گورنمنٹ کے نام پہ جاتا ہے نا, और कोई वैसे खड़ा हो जाए वहां आपसे टोल लेकर खुद अपनी जेब में डाल ले तो फायदा नहीं होगा। तो इसके साथ इखलास को जोड़िए। जितने आप मुखलिस होते जाएंगे ना, बिल्कुल क्लीन क्लीन ट्रांसपेरेंट, उतना इस्तकामत जमना। फिर सारी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, मत चलिए उधर जिधर की हवाएं हो। मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी। इस्तकामत वाला तो अकेला भी बहुत है, और एक खड़ा होगा तो जीरो लगते जाएंगे। अल्लाह 10 को 100 में बदलेगा, और इब्राहिम इसकी मिसाल थे। बुत परस्त घर था, बुत फरोश बाप था, वक्त का प्रोहत था, अपने बादशाह का वजीर था, लेकिन इस्तकामत पे खड़े हुए। फिर जो जाता है तो जाए, अल्लाह दोनों हाथों से सारे ही ले ले, मुझे नहीं चाहिए तेरे अपने बीच के रास्ते के ये झूठे मोती, सब ले ले। फिर दिल तड़पता है कि अल्लाह मेरी सारी चीजें मेरे हाथों से तू ले, मेरे बाद क्यों लड़े लोग मेरी जायदादों पे, मैं भी तेरा, मेरा माल भी तेरा, मेरा घर भी तेरा, मेरे बच्चे भी तेरे, मेरा शौहर भी तेरा, सबको फिर आप डिवोट कर देते हैं अल्लाह के नाम पे। फिर ऐसे गैर महसूस तरीके से आप वो स्टेरिंग घुमाते हैं, एक एक करके आपके घर का हर फर्द अल्लाह की तरफ मुड़ने लगता है। और याद रखिएगा एक जुमला, आपके लिए अलग से लिखवाया है, कि इस्तकामत के हसूल के लिए दिल और जुबान की इस्लाह लाजिम है। ये जो घर में मुखालफत होती है और बाद में लड़ाई हो जाती है ना, ये है वो नहीं करनी। इसके लिए आपको अपने दिल और जुबान की इस्लाह करनी है। दिल को मानवीय बीमारियों से भी बचाइए, और जाहरी बीमारियों से तो माशाल्लाह हर साल चेकअप करवा के आप देख ही रहे होते हैं कि दिल किस कैफियत में। हम दीन के नाम पर जब ये चंद चीजें अपने दिल से नहीं निकाल पाते तो लड़ाई में बदलती हैं बातें। बीबी सुमैया ने घर में लड़ाइयां नहीं लड़ी, और हजरत आसिया ने फिरौन से कोई मुंहमारी नहीं की। तो ये मैं उन सारी बहनों को और भाइयों को भी कह सकती हूँ अपने तौर पे कि दीन के नाम पे झगड़े ना खड़े कीजिए, अपना अमल और खूबसूरत करते जाइए। आप एक और स्टेप मूव फॉरवर्ड कीजिए अल्लाह की तरफ, बाकी आपसे चिपके हुए खुद ब खुद अल्लाह के करीब आते जाएंगे। 3-4-5 साल के अंदर सारा घराना अल्लाह की तरफ आएगा, क्योंकि इसमें खैर है। वो आपको पुरसकून देखें, वो आपको मसरूर देखें, वो आपको बहुत एनर्जेटिक देखें। तो दिल की कौन सी बीमारियां जो अब आपकी मेरी चेकलिस्ट है। नंबर एक, हसद खुरच दीजिए। ये जो मैं लिखा रही हूं ना, लिख लीजिए, ये परहेज की चीजें हैं। आपका दिल कह रहा है ना कि आपको फरिश्तों की ये खुशखबरियां मिले, आप मुस्कुराएं। और साहबा के इतने वाकयात हैं जो मैं आपको यहां नहीं सुना पा रही अभी, मुस्कुराते थे, दुश्मन जान लेने लगा और ये मुस्कुरा रहे हैं। तो आपको इन चीजों से मेरे और आपके दिल को पाक करना है इंशाल्लाह। हसद, लालच, गीबत, बोहतान, रियाकारी, शक, बदगुमानी, तकब्बुर, ख्वाहिशात और लंबी उम्मीदें, और दुनिया की मोहब्बत। आप देखिए ये 4 डायमेंशन हैं। ऊपर सारी जो है ना, ये आपके दिल की बातें हैं, जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से आपको महसूस हो रहा है रिश्तों नातों में होता है। जो 2 नंबर की सारी चीजें हैं, इसमें आपके नेक काम करने और दूसरे जो आपके साथी हैं उनके बारे में बदगुमानियां, और मैं बहुत करता हूं दूसरे थोड़े, और अपने लीडर से शक है, और अपने बड़ों पे और अपनी मकसद से ही अभी आप मुतमईन नहीं, आपने क्या करना है घर बैठिए। और तीसरी तरफ फिर आपकी वो लंबी ख्वाहिशात है जिसमें आपकी नस्लें पड़ी हुई है, और सबकी रूट कॉज दुनिया की मोहब्बत है। इनको निकाल दें, इंशाल्लाह इफाका होगा, आपका दिल ललचाएगा कि अल्लाह मैं तेरे रस्ते में जमूं, और कोई मुझ पे मुश्किल आए और मैं उस पे जमूं और मैं स्माइल दूं, और ततनज़ल अलैहिमुल मलाइका की कैफियत हो। तो वो असबाब भी देख लीजिए जिससे इस्तकामत मिलती है, क्योंकि आज तो मुझे इस्तकामत लग रहा है डायमंड हीरा। आप कहते हीरा बहुत मजबूत होता है ना, तो आपको मुझे अपने ईमान को हीरा बनाना है। इसके लिए सबसे पहले अल्लाह तआला की जात और सिफात की दुरुस्त पहचान और फहम लाजमी है। जब तक ये नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं, ये मैं रोज सिर्फ बातें ही करके जाऊंगी अगर मुझे अपने रब की मार्फत नहीं होगी। फिर दूसरी चीज, इस्तकामत पे जमाने वाली सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करना और इस पर अमल पैरा रहना। अल्लाह के नबी से मोहब्बत और आपकी इत्तबा के बगैर तो आप जम नहीं सकते, कब के पलट गए होते अगर अल्लाह के नबी की सीरत ना पड़ी होती आपने। फिर तीसरी चीज, आपका अपना नफ्स, ख्वाहिशात और शैतान के खिलाफ जिद्दोजहद करना। इन सब के यकीनी नताइज में से ईमान की पुख्तगी मिलेगी और इस्तकामत में इजाफा होगा। तो आप इन सारे लफ्जों को गिन के रख लें, एक एक पे काम करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। सवाल ये कि क्या आज के दौर, अब ये सारी बातें करके आप बीबी सुमैया और बीबी आसिया पे ना अटक जाएं, तो क्या दौरे हाजिर में इस्तकामत की जरूरत है? और अगर है तो उसके क्या वसाइल हैं? और अगर हैं तो फिर हम उनको कैसे पाएं? तो इस्तकामत के कुछ वसाइल, मीन्स ऑफ द इस्तकामा क्विकली गो थ्रू कराऊंगी। ये भी अरबी के एक बुक में से मैंने चीजें ली और अगर आप मौका देंगे तो आपको ये बुक पढ़ा दूंगी। नंबर एक, कुरान पाक की तरफ तवज्जो और इनायत फरमाइए। आज जो लोग कुरान को पढ़कर समझने लग गए, आज सदी चेंजेस की है, माशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली है। लाखों लोग इस वक्त कुरान के साथ जुड़े हुए, कुरान की तरफ तवज्जो कीजिए। फिर अल्लाह ताला की शरीयत और आमाले साले का इल्तजाम, इल्तजाम कहते हैं लाजिम, पकड़ लीजिए। यानी मैंने शरीयत को बताना है, वो चाहे मेरे सर के से लेके पांव तक के जिस्म पे हो या मेरे खुशी गम में, मेरे बच्चे की शादी में, यानी मैंने शरीयत को पांव तले नहीं रोना। तीसरी चीज, इत्तबा और अमल के लिए नबियों के किस्सों में गौर व फिक्र कीजिए, इससे आपको लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी। नेक्स्ट, दुआ। अल्लाह के नबी ने दुआएं सिखाई थी, ए अल्लाह या मुकल्लिब अल-कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी, ये दुआ होनी चाहिए आपके पास आज। फिर अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका जिक्र होता है ना फिर उसको आप पे प्यार आ ही जाता है, आखिर फिर रस्ते खुल ही जाते हैं। अल्लाह भी देखेगा कि ये बंदा दीवानों की तरह हर वक्त मेरा ही नाम लेता रहता है, मदद आएगी उसकी। फिर मुसलमान का सही और सीधे रास्ते पर चलने की हिरस और तड़प रखना, इंशाल्लाह ये तड़प आपको आगे लेके चलेगी। और जो तड़प नहीं है ना वो फिर कुछ नहीं सुना जाता। आप सुना तो छोड़ दीजिए, सुनाने का दर्जा तो बहुत बाद में आता है, सुनने का दर्जा नहीं फायद होता। और मैं हैरान होती हूँ जिनको पता भी है, जो चक चुके हैं, जो कहते हैं चलते फिरते सुन लेते हैं, अच्छा थोड़ा सुनते ऐसे पूरा नहीं, अच्छा मैं देखिए बदगुमानी नहीं कर रही लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक अगर बैठकर सुन रहे हैं ना तो मुबारक होता था नज़ल अलैहिम अल-मलाइका। चलते फिरते सुनने से दिल सुन हो जाता है। फिर अगली बात तरबियत, आपको अपनी भी और अपनी नस्लों की तरबियत इस पे करनी है कि आपको इस्तकामत फिर दीन की अहमियत समझ आए। फिर तरीक और रास्ते पर एतमाद, जिस रास्ते पे चल रही हूँ जिनको राहबर समझा उन पर एतमाद हो। जब तक आपको अल्लाह की इस किताब और इस किताब को लेने देने वालों पर एतमाद नहीं होगा, आप कभी भी नहीं जमेंगे, कदम कदम पे पांव फिसलेगा। और फिर अल्लाह अज़्ज़वजल की दावत की मशक और ट्रेनिंग, इन सब के अंदर कितनी ही बातें हैं जो इस वक्त आपको नहीं मिल रही, सिर्फ चंद पॉइंट्स हैं आपके मेरे शऊर के लिए कि अल्लाह के रस्ते की दावत देने के लिए सीखिए और ट्रेनिंग्स लीजिए, ढंग की तबलीग कीजिए अल्लाह के बंदो, लोगों को मत पुट ऑफ कीजिए। एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर देंगे लोग उससे ऊपर कभी फिर जाएंगे ही नहीं। कच्चा पक्का अधूरा दीन मत दीजिए, कच्ची पक्की रोटी से पेट में दर्द होती है। और वो मारूफ मिसाल है नीम हकीम वाली, उसको भी सामने रखिए। फिर आगे बात है साबित शुदा अनासिर को अपनाइए, जो चीजें हिस्ट्री से प्रूव हो चुकी हैं, कैसे साहबा के साथ अल्लाह की मदद आई, कैसे सलफ सालेहीन ताबीन तबाए ताबीन, आप क्यों उसके ऑपोजिट कुछ और करते हैं, बस उसको अपना लीजिए। यानी आप कह लीजिए कि अपने माजी के लोगों से फायदे उठाइए। फिर अल्लाह की नुसरत पर भरोसा रखिए, और ये के मुस्तकबिल इस्लाम का है, याद कर लीजिए वो पारा जिसमें इस्लाम की बशारतें, दसवां पारा था, ग्यारहवां पारा था इस्तबशार। जब तक आप और मैं आज के मुसलमानों को ये यकीन नहीं होगा, हम हिम्मत ही नहीं करेंगे, कच्ची बातें तोड़ने, दिल हिम्मतें तोड़ने वाली, हाय कुछ नहीं होना तो फिर कुछ ना करें, नहीं यकीन रखिए। हाँ मेरा नाम डल जाए, अल्लाह मुझे खाद बना दे। फिर बातिल की हकीकत की मार्फत रखना और इससे धोखा न खाना। आज इस दजल से अपनी नस्लों को निकालिए, जितना बातिल को समझते जाएंगे, ये ऊपर जो शुगर कोटिंग है ना, ये शुगर हटा दें, या ऊपर जो गोल्डन कागज लगा हुआ है ना सोने के अंडों पर, उस कागज को उतार दीजिए, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये उनको ऊपर के अजीबो गरीब बातिल की चीजों की खूबसूरतियों के जो स्लोगन दिखाए जा रहे हैं दिन रात और आप भी उसमें भागे, इसको हटा दीजिए, नीचे से निथरा हुआ हक दिखेगा। फिर बातिल की हकीकत की मार्फत रखिए और इसे धोखा न खाइए। यानी वही बात है कि इस दुनिया में जो आज एंटी इस्लामिक और हक के खिलाफ चीजें, उसको खोल दीजिए। साबित कदमी यानी सुबात कदमी पर मुआविन अखलाक के जेवर से आरास्ता हो, ये सबसे ज्यादा मुझे चाहिए आप में से, जिसको मैंने हमेशा कभी ना अपने लिए पीछे किया ना अपने साथियों के लिए। जो कुरान सीखने आते हैं हम लोगों से, मैं उन सबको कहती हूँ कि मैं आपके किरदार और आपके अखलाक में कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, और सब स्टूडेंट्स तो बेचारे नए नए होते हैं, उनको मैं क्या कहूँ, वो तो बेचारे हैं, वो तो बेचारे अभी नए नए हैंड टू माउथ हैं। लेकिन दीन का काम करने वालों को हमेशा ये कहा जाता है कि आपका अखलाक और आपका किरदार हो, करेक्टर सीक्स हेयर। नूरुल्लाह नूर में एक पूरा टॉपिक सिखाया जाता है करेक्टर सीक्स, और किरदार लफ्जों से ज्यादा बोलता है। और फिर जन्नत की नेमत और जहन्नम के अजाब के बारे में गौर व फिक्र करना और मौत को याद करना, क्योंकि इसके बगैर बात नहीं बनती। अब अगर आपने ये 15 चीजें समझ ली हैं, तो फिर आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि इस्तकामत और साबित कदमी कहाँ दिखाऊं, गुनाहों पे, नाफरमानियों पे? तो वो मौके भी देख लीजिए चंद लम्हों में। नंबर एक, फितनों के वक्त साबित कदमी का मुजाहरा कीजिए, जो आज, टुडे, अल आन, आज की जरूरत, अल यौम। आज दुनिया फितनों का शिकार हुई पड़ी है, और आप उस वक्त अगर दीन छोड़ गए, और देख लीजिए क्या कहूं मैं इस पे अब ज्यादा बात। लेकिन जब फितने आए तो आप इस्लाम पे और अल्लाह के हुक्मों पे साबित कदम हो जाएं। जब आपको पाबंदियों में जकड़ दिया जाए, आप कहते नहीं मैं अपने रब की बात नहीं छोड़ूंगी, आपको अपनी बात बदलनी पड़ेगी। फिर जब अल्लाह के रस्ते में जिहाद का मौका आए, जो इस वक्त भी आपको इल्मी जिहाद की सूरत में दिखे, या जिद्दोजहद में दिखे, और आखिरी सूरत में क़िताल की सूरत में आ जाए, तो साबित कदमी और इस्तकामत। और आपको तो जिहाद से मुंह फेरना कबीरा गुनाह, क्योंकि आपने अपनी जान को बचा लिया, इस्लाम की जान कुर्बान कर दी, ये तो आपने अपने खोटेपन का सबूत दे दिया ना। तो जैन वक्त पे आपको छोड़कर पीछे हो जाए ना, हमसे नहीं होता आप खुद कर लें, तो वो बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह की निगाहों में। खड़े खड़े आप अपनी जगह छोड़ दें, खड़े खड़े अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, और दी आपको और आप किसी और से चुपके चुपके कराते फिर नहीं, मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि मैं अपने कोर्सेज भी कर रही हूं और मैंने ये भी करना, तो याद रखिये बहुत बड़ी खयानत होगी। मेरी वजह से अगर दीन के मेरे किसी काम, मेरे किसी कोर्स में कमी आ गई, तो याद रखिए कि कल दुनिया में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आगे जाकर मुश्किल होगी। और इस्तकामत नहीं मिलती, सबसे बड़ी बात है। फिर मनहज पर इस्तकामत और साबित कदमी का मुजाहरा करना। क्या है मनहज? नहज से अल्लाह रसूल की बात, मुस्लिम मनहज यही है। अल्लाह और उसके रसूल की बात के मुकाबले पे कोई बड़े से बड़ा स्लोगन, बड़ी से बड़ी बात आ जाए, नहीं मानूंगी। और हर एतबार से सुन्नत नबी पर कायम रहिए। आज बिदात का दौर है, चूंकि जहालत है, चूंकि सच्चा दीन दिया नहीं, तो लोग बेचारे अपने अर्ज को, अपनी अर्ज को और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, बिदात हो जाती है, उनको पता भी नहीं लगता ये बिदत है, वो तो बोल रहे हैं बेचारे। लेकिन आपको वहां फिर सुन्नत की मोहर लगानी पड़ेगी। और फिर मौत के वक्त साबित कदमी, दुआ कीजिए अल्लाह जब मौत आए तो कलमा जुबान पे हो। और इमाम इब्ने कय्यम ही का वो कॉल दे देती हूँ कि सारी जिंदगी बंदे मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह का प्यार और ईमान, रब्बुन अल्लाह। मौत के फरिश्ते को देखकर वो जुमला जुबान पे आ जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा में बदल जाता है। जैसी जिंदगी होगी वैसी मौत आएगी। दिल में जो जिंदगी में बसते थे जो लोग, वही आखिरत में भी, मौत के वक्त भी आएंगे, तो मौत के वक्त सारे ही पोल खुल जाएंगे मेरे आपके। अल्लाह दिल की गहराइयों के साथ तो मेरा रब्बुन अल्लाह कहने वाला बना दे। आज की दुआ ले लीजिए, एक तो वही है जो बीच में अभी दी आपको, या मुकलिब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। और आपको बताऊं कि सबीलुल जन्ना कोर्स जो आपको करवाया जाता है, तो उसके शुरू के दिनों में छोटी छोटी टिप्स दी जाती हैं, स्टडी टिप्स के नाम पे। शायद डे टू पे आपको दुआएं सिखाई जाती हैं, इस्तकामत की दुआएं, सारी दुआएं इसी मौजू के साथ आती हैं। तिर्मिजी की दुआ है 3233, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैराति व तर्कल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ। अल्लाह मैं तुझसे भले काम करने की तौफीक तलब करती हूँ या करता हूँ, और नापसंदीदा और मुनकर कामों से बचना चाहता हूँ, और मिस्कीनों से मोहब्बत चाहता हूँ। और जब तू अपने बंदों को किसी आजमाइश में डालना चाहे तो फितनों में डाले जाने से पहले मुझे अपने पास बुला ले। यह है इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। आप कहते हैं तीन लोगों को शहादत की खुशखबरी है, जिसमें एक वो है कि जो अपना ईमान बचाते बताते मर जाए, जान चली गई, बीबी सुमैया की जान फितनों में उन्होंने, फिर क्या कहना चाहिए कि अबू जहल की बातें नहीं मानी, लेकिन जान देना कबूल कर लिया। आज की हदीस मुस्नद अहमद में है 13079। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यस्तकीम ईमान अब्दिन हत्ता यस्तकीम कल्बुहु वला यस्तकीम कल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानहु। दिल की तख्ती पे लिखे इन जुमलों को, प्यारे नबी के खूबसूरत मोती हैं, किसी का ईमान उस वक्त तक दुरुस्तगी के साथ मजबूत नहीं हो सकता जब तक इसका दिल दुरुस्तगी के साथ मजबूत ना हो, और किसी का दिल उस वक्त तक दुरुस्तगी के साथ मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसकी जुबान दुरुस्तगी के साथ मजबूत ना हो। एक लाइन खींच लीजिए, जुबान से दिल और दिल से पहले आप देख लीजिए कि ईमान, फिर कल्ब इस्तकामत वाली, और उसके बाद दिल और जुबान। यानी पहले जुबान सीधी कीजिए, जुबान सीधी हो जाएगी, दिल भी दुरुस्त हो जाएगा, तो ईमान की इस्तकामत मिलेगी। अल्लाह ताला आपको मुझे अता फरमाए। पारा 24 में मौजूद कुलूब की बात कर लेते हैं। आयत 45 सूरह ज़ुमर, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु शिस्मज़त व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदह, और जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला यूमिनून बिलआख़िरा, तो कुड़ने लगते हैं उन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। तो अल क़ल्बुल मुशमइज़, कुड़ने वाला दिल इस्लाम की तरक्की को, खैर के कामों को बढ़ता फैलता देकर कुड़ने वाला दिल, अल्लाह आपका मेरा दिल ऐसा न करे। सूरत गाफिर आयत 35, कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्ली क़ल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार अल क़ल्बुल मतबू अलै, मुहर लगा हुआ, ठप्पा लगा हुआ दिल, नेगेटिव दिल हैं दो इस बारे में। और अगर हिदायत से मुतल्लिक देखिए तो 6 आयात हैं, गाफिर 28, 29, 53, 54 और फुस्सिलत 17, 44। इसी तरतीब से अगर देखें तो इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफ वमा अहदीकुम इल्ला सबील अर्रशाद, मर्द मोमिन का जुमला, वलकद आतैना मूसल हुदा हुदम व ज़िक्रा लिउलिल अल्बाब फहदैनाहुम फस्तहब्बुल आमा और लिल्लज़ीना आमनु हुदम व शिफा। इस इन अल्फाज में है। आइए शुरू करते हैं तर्जमे को। सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 32 से 75 तक इस बारे में पढ़ेंगे। सूरत शुरू हो चुकी, तरतीब के एतबार से 39 नंबर की सूरत थी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फमन असलमु मिम्मन कसब अलल्लाहि व कज़ब बिस्सिदकि इज़्जाअहु अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन। आयत 32 का टॉपिक, सबसे बड़ा जालिम। और अगर 32 से 35 तक ले जाऊं तो दो किरदार और उनका इंजाम। इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, और सच्चा दीन जब इसके पास आए तो इसे झूठा बताए। कैसे कुफार के लिए जहन्नुम ठिकाना नहीं है। पीछे की तरह क्वेश्चनिंग, और आपको बताया गया था कि सूरत ज़ुमर में अधूरे जुमले भी हैं और सोल सर्चिंग क्वेश्चन भी हैं। क्या बता दिया अल्लाह ताला ने इन आयात में आपको मुझे, कि या तो इस रसूल जिसको तुम नहीं मानते बकौल तुम्हारे वो झूठा नबी है, तो वो तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मान जाओ कि फिर तुम नबी की बात ना मानने वाले झूठे लोग हो। आय 33 से 35, ये दुनिया रब चाही तो आखरत मन चाही। जब आप इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी से जिएंगे, अल्लाह के हुक्मों से जिएंगे, तो अल्लाह आपको तोहफे में आखरत में जन्नत अता करेगा। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और जो सच्चे दीन को लाए हैं, और जो सच्चे दीन को लाए और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग पारसा हैं। यानी नेक लोग तो यही होते हैं जो ऐसे हैं। इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहें। नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह ताला इनसे इनके बुरे आमाल को दूर कर दे और जो नेक अमल उन्होंने किए इनका अच्छा बदला अता फरमा दे। आयत 36 से 37, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं। इस अंदाज को जरा सा महसूस कीजिए, यानी बार बार क्यों इस्तकामत की सीढ़ी से फिसल जाते हो, दुनिया वालों की तरफ भागते हो, तो क्या तुम्हारा रब तुम्हारा काम नहीं करता। कौन सी तुम्हारी जरूरत है जो अल्लाह से तुम्हारी पूरी नहीं हो रही। अलैहिस्सल्लाहु भी काफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं। ये लोग आपको अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं। जरा नोट कीजिए, हर वो जुमला जो आपको इस तकामत से हटाने के लिए आपके प्यारे बोलते हैं उसको जहन में ले आइए। ये लोग आपको अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, यानी जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, सोचिए जुमले को। इसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं और जिसे वो हिदायत दे इसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला गालिब और बदला लेने वाला नहीं? क्या हर जुमला आपके दिल पे पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आयत 38 से 40, कायनात में अल्लाह ताला की निशानियां। वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ध लयकूलूनल्लाह। अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों जमीन को किसने पैदा किया तो यकीनन वो यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने। आप उनसे पूछिए, आप उनसे कहिए, अच्छा ये तो बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये इस नुकसान को हटा सकते हैं? आप खुद जवाब दीजिए। मैं इस वक्त सवालिया अंदाज में खुद से पढ़ रही हूँ ताकि आप इन जुमलों पे गौर करें और साथ ही साथ दुआ करते जाएं कि अल्लाह तू हमें हिदायत पे कायम रखना, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को हिदायत पे रखने की ख्वाहिश रखेंगे फिर उसके लिए कोशिश भी करेंगे उतना अल्लाह सुभाना ताला आपको हिदायत पर जमाता रहेगा। तो क्या जवाब दीजिए? आप इनसे कहिए, अच्छा ये तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये इसके नुकसान को हटा सकते हैं? अमूमन लोग इसी किस्म की वजह से तो इस्तकामत से हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम मेरा रास्ता छोड़ भी दोगे तो मिलेगा तो तुम्हें वही जो के मैं तुम्हें दूंगा, वरना तो तुम्हारे नसीब में गुमराही ही होगी। या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये इसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? देख लीजिए, जो मिलना होता है ना वो ठुकने वालों को मिल जाता है। सारी दुनिया को आप नाराज कर भी देना तो अल्लाह अपनी रहमत से आपको खैर दे ही देता है, लेकिन जब तक आप इस चीज के ऊपर खुद नहीं कन्विंस होंगे आप दूसरों को भी कन्विंस नहीं करेंगे। क्या पता चला कि आप कह दीजिए कि अल्लाह मुझे काफी है, तवक्कुल करने वाले इसी पर तवक्कुल करते हैं। ये है इस्तकामत पे जमने की कुंजी। आज अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक को चेक करिए। छोटी सी बात, छोटा सा फायदा मुझे हटा देता है और छोटा सा डरावा मुझे हटा देता है तो फिर इस्तकामत तो नहीं आएगी। इस इस्तकामत पे जमने के लिए जरूरत है कि आपकी जिंदगी में आपके रब का मुकाम बहुत वाज़ेह हो। आयत 40, कह दीजिए कि मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अभी अभी तुम जान लोगे कि किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता है और किस पर दायमी मार यानी हमेशा का अजाब और हमेशगी की सजा होती है। आप देख रहे हैं कि कैसे सवालात उठाए गए इन सारी आयतों में। दो किरदार और दो मुख्तलिफ अंजाम बताए जा रहे हैं, एक अल्लाह पर झूठ घड़ने वाला और एक सच्ची बात कहने वाला, एक इस्तकामत पे रहने वाला और एक बात बात पे दीन के और इस्तकामत के रास्ते को छोड़ने वाला। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और ये जुमले अपने दिल पर लिख लीजिए कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा। आपको अल्लाह के रास्ते में तकलीफ आ रही है तो अल्लाह ही ना आपकी मदद करे। कभी ऐसा हुआ आपके लिए आपके दोस्त कुछ खाना बनाए या आपके बच्चों को देखे तो आप कितने शुक्रगुजार होते हैं उसके? तो क्या अल्लाह ही ना जाने? वो कहते हैं ना कि क्या गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो अपने दिल को इस जुमले पे जमाइए कि मेरा अल्लाह मुझे काफी है। गलती हमसे क्या होती है कि हम अपने आप को गलत पे ले आते हैं। और वो कहते हैं ना क्या डर है जो सारी खुदाई हो मेरे पीछे, यानी एक शेर है कि क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। ये है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसे अल्लाह तौहीद की हिदायत दे दे उसे कौन गुमराह करे। और जिस बदनसीबी की गुमराह यानी वो शख्स जिस बदनसीब की गुमराही पर अल्लाह का हतमी फैसला हो जाए तो उसको फिर कोई हिदायत भी नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह फिर जबरदस्त भी और इंतकाम लेने वाला भी है। फिर आप देखिए कि आयत 38 से 40 में आपने उनके खुद साख्ता माबूदों को देखा है, बेख्तियार हैं, लाचार हैं। मुशरिकीन खुद तक ये मानने पर मजबूर थे कि खालिक तो अल्लाह ही है, रब तो वही है, बनाने वाला तो वही है। कोई आफत आती थी सबको छोड़कर खुद साख्ता माबूदों और अपने ही हाथों के बनाए वो को छोड़कर अल्लाह को क्यों पुकारते थे? उनके दिल को वो यकीन था जो बंदा मोमिन की जुबान और उसके अमल से दिखता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इनको छोड़ दें। अब आगे 41 से 42 में दाई की जिम्मेदारी हक पहुंचाना है, मनवाना नहीं। यानी जो हिदायत पाएगा तो अपने ही लिए पाएगा। इन्ना अंज़लना अलैकल किताबा लिन्नासि बिल हक, आप पर हमने हक के साथ ये किताब लोगों के लिए नाजिल फरमाई है, बस जो शख्स राह रास्त पर आ जाए इसके अपने ही लिए नफा है और जो गुमराह हो जाए तो इसकी गुमराही का बवाल इसी पर है, आप इसके जिम्मेदार नहीं। अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई इन्हें इनकी नींद के वक्त कब्ज कर लेता है, फिर जिनकी मौत का हुक्म लग चुका होता है इन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। ये रूहों की बात क्यों हुई? अल्लाह के नबी लोगों को दावत देते थे, किसी के ऊपर जबरदस्ती चस्पा नहीं करते थे, मोहब्बत और प्यार से तड़पते थे और जिससे जितनी मोहब्बत होती है ना उसको इंसान उतनी दफा बुलाता है, जैसे आप अबू तालिब को पुकारते थे। लेकिन जब देखा कि वो लोग नहीं मान रहे तो फिर आप उनसे बेन्याज भी हो जाते थे। लेकिन जो काम आपने नहीं किया वो क्या था? कि आपने अपने दीन में तब्दीली नहीं की, लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक हक में तरमीमात नहीं की, किसी बात को छुपाया और किसी को बताया नहीं, क्योंकि एक अच्छे दाईये दीन की यही जिम्मेदारी होती है। और अब यहाँ जो मौत और जिंदगी की बात नींद की सूरत में आपको मुझे बता दी अल्लाह ने आयत 42 में, वो क्या है कि जिस तरह रोज रात को सोते हो और सुबह उठ जाते हो, एक दिन तुम अबदी मौत सोओगे जो कि अबदी भी नहीं है, और सूर की आवाज यानी सूर के अलार्म के साथ ही उठ जाओगे, वो तुम्हारी असल जिंदगी होगी। हर रोज हमारी मौत का एक ट्रेलर हम खुद देखते हैं, क्या उसके लिए हकीकी मौत लाना कोई मुश्किल है? और जो सोते से उठता है तो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो क्या कब्र से उठते हुए उसकी जुबान से ये लफ्ज नहीं आ जाएंगे? और हर सुबह आपके लिए एक मोहलत है। हर दिन जब सुबह में आप बिस्तर से उठे ना तो कहा करें कि अभी भी अल्लाह को मुझसे अच्छी बात की उम्मीद है, अभी मेरी मोहलत उम्र बाकी है, अल्लाह ने आरजी मौत यानी नींद से मुझे बेदार कर दिया और अल्लाह के इख्तियार में कि वो मुझे रात को सोते में ही ले जाए। अल्लाह के नबी रात को सोते वक्त बड़ी प्यारी दुआ मांगते थे, बिस्मिका रब्बी वदात जंबी वबिका रफाऊ हु इन अमसकत नफसी फरहमहा व इन अरसलतहा फगफजहा बिमा तगफजु बिही इबादक सालिहीन। ए मेरे रब, मैं तेरे नाम के साथ अपना पहलू बिस्तर पर लगा रहा हूँ और तेरे नाम के साथ ही उठूंगा, अगर नींद के दौरान तूने मेरी जान कब्ज कर ली तो इस पर रहम फरमाइएगा, अगर तूने मुझे दोबारा जिंदा किया तो मेरी इसी तरह हिफाजत फरमाइएगा जैसी आप अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाते हैं, यानी आफात और फितनों और नाफरमानियों से। बुखारी और मुस्लिम की दुआ है ये, इसको याद कर लीजिए तो इंशाल्लाह इस्तकामत के दर्जे पे फायज होना आसान होगा। आगे 43 से 46 में शिफात के खुद साख्ता मेयार भी हैं और शिफात अल्लाह ही के इख्तियार में है। अमित तखज़ु मिन दूनिल्लाहि शिफाअ, अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक्त और इनकी जिनकी मौत नहीं आई इन्हें इनकी नींद के वक्त कब्ज कर लेता है, फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है इन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को भी सिफारशी मुकर्रर कर रखा है? आप कह दीजिए कि गो वो कुछ भी इख्तियार न रखते हो और न अकल रखते हो। कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ही है, तमाम आसमानों और जमीन का राज उसी के लिए है, तुम सब इसी की तरफ फेरे जाओगे। जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाए तो इन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते, और जब इसके सिवा औरों का जिक्र किया जाए तो इनके दिल खिल कर खुश हो जाते हैं। ये है जी अल-क़ल्बुल मुश्मइज़ आयत 45 में, जरा से इसको समझिए। आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल मुतनफ़र होते हैं किससे? इस्लाम से, इस्लाम की तरफ बुलाने वालों से, अपने वक्त के रसूलों से और आज के दौर के दाईयाने दीन से और सच्चे अमल करने वालों से। आज लोग उनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, कुछ और नाम फंडोस और कुछ नाम वर्ल्ड वाइड भी बड़े मशहूर हैं कि ये तो ऐसे हैं ये तो वैसे हैं। तो जब कोई बंदा दीन और दीनदार और दीन के ऊपर उसकी इस्तकामत को देखकर खुश ना हो तो उसका दिल कुड़ने वाला दिल है। अपने दिल को चेक कीजिए, किसी को दीन का काम करते देखकर खुश होती हो? दिल तो नहीं कुड़ता, जलती कुड़ती तो नहीं, बुरा तो नहीं लगता। और ये कैफियत किस बात की अलामत है? जब आप कुफर पे जले कुड़े तो तो अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। और अगर आप इस्लाम की ताकत पे कुड़े जलें कुड़े तो अल्लाह से मोहब्बत ना होने की अलामत है। फिर अल्लाह का जिक्र करना, जिक्र को पसंद करना आपके ईमान की अलामत है, और अल्लाह का जिक्र पसंद ना करना शिर्क की अलामत है। यानी ये आपके मेरे लिए क्राइटेरियन है, अपने दिल का टेस्ट करवा लीजिए फ्री में। इस्लाम को फैलता देखकर, दीन को फैलता देखकर खुश होती हूँ कि परेशान रहती हूँ, और सो ऑन। और जहां शिफात की बातें भी चूके हो गई, तो याद रखिए कि शिफात अल्लाह का हुक्म है। इज्जत देगा वो नबियों को, रसूलों को और औलिया कराम को, और चीजों को, शुहदा को भी देगा कि चलो तुम इसकी सिफारिश कर लो। ये बिल्कुल ऐसे कि किसी स्कूल वाले अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के, उनकी कोई ऐसी सेरेमनी है तो जो गेस्ट ऑफ ऑनर आते हैं उनके हाथ से दिलाते हैं। अब फैसला उनका नहीं होता, फैसला स्कूल वालों का होता है, बस वो एक एक के हाथ में थमाते हैं। क्योंकि जिंदगी में रसूलों को लोगों ने वो मुकाम नहीं दिया होता, और इसी तरह अपने दौर के नेक लोगों को या दीन की तरफ बुलाने वालों को लोग अमूमन अच्छा मुकाम नहीं देते, तो अल्लाह ताला उनको इज्जत देने के लिए, ऑनर देने के लिए क़यामत के दिन बुलाकर उनके हाथों से जन्नत में भिजवाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी की शिफात हासिल करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारे हर अच्छे अमल को हमारे लिए सिफारिश बना दे। असल फैसला अल्लाह करेगा, और वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है जिसका कुरान उसका सिफारशी हो, जिसकी नमाजें उसकी सिफारशी हो, जिसके रोजे उसके लिए सिफारशी बन जाए कि बाबू रैयान से जाओ, और अल्लाह हमें उनमें कर दे कि जिनको जन्नत के सातों दरवाजों से बुला लिया जाए। और अल्लाह ताला आपके मेरे लिए दुनिया में इस्तकामत के दर्जे पे रहना फ़र्ज करे। असल चीज इस्तकामत है। देखिए, आप बात दिल में आ गई तो बोल ही देती हूँ, आप साबित कर दें कि आप अल्लाह की हैं, ट्रस्ट डेवलप करें। द बेस्ट स्किल यू कैन हैव इज ट्रस्ट। एक बाबा था हमारे घरों में, पुराना बाबा, आपके भी बाबे होंगे, उसने ये साबित कर दिया कि वो खोटा नहीं है, बेईमान नहीं है, झूठा नहीं है। बस हमें उस पर इतना यकीन था, हम घर की चाबियां देकर भी उसको चले जाते थे। जब आप अपने बन जाते हैं ना, तो सारे चाबियां, खजाने, कोड, पासवर्ड्स, ए बी सी डी सब आपके पास, मशवरे भी, इरादे भी, ये बन जाइए, उसके बाद आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह भी अपने राज देने लगता है उन लोगों को जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ चलते हैं। इसको फरासत कहते हैं, इत्तकु फरासतुल मोमिन। कोई गैबदान नहीं बंदा हो जाता, कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता, लेकिन उसको इशारों से सूझने लगता है कि अब आगे होने क्या वाला है। और अल्लाह ताला आपको मुझे इस्तकामत के आला तरीन दर्जे दे। इंजॉय करना है ना जिंदगी, तो आज इस दुआ को इसके साथ उठिएगा कि अल्लाह मुझे अब जिंदगी के बाकी दिनों में वो इस्तकामत वाली जिंदगी दे। बोला वो क्या है? और याद रखिये, इसके लिए कुर्बानियां, हिजरतें, नफ्सकुशी, माशरे के साथ कटना और बिगड़, लोग जो कहते हैं कहते रहे, तो बस सर पांव आंखें लपेट कर चुपके से चलते जाइए। जितनी जितनी कुर्बानियां देते जाएंगे, अल्लाह आपको फरिश्तों की उतनी खुशखबरियां देता देगा इंशाल्लाह ताला। आयत 46, आप कह दीजिए कि अल्लाह, आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, छुपे और खुले को जानने वाले, तू ही अपने बंदों में इन उमूर का फैसला फरमाएगा जिनमें वो उलझ रहे थे। आज ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्या ठीक है क्या गलत है। तो याद रखिए, हक की एक अलामत आपको बता दूं, ताकि आप फिर जमे और ठुकें किसी ना चीज पे तो सही पे ठुकें, और वो क्या है कि इसके बाद दिल को सुकून मिलता। जो बात सुन के आपका दिल कहना ये ठीक है, वो ठीक होगी। जिस पे आपका दिल जम जाए उसके बाद देर इज नो मोर चॉइसिस, बस वो आपकी चीज है, और इस पे फिर अल्लाह आपका दिल जमा भी देगा। जब तक दिल से शक और इधर उधर की बातें नहीं निकालेंगे, कभी नहीं जमेंगे। और आमाल की जवाबदेही से बचने के लिए जो लोग शिर्क के सहारे लिए बैठे हैं ना, फुला आ जाएगा तो फुला आएगा, तो उनके लिए ये आयत एक क्राइटेरियन भी है। आगे देखिए आयत 47-48, रोजे क़यामत कोई फिदिया सजा से बचा न सकेगा। जो करना है आज कर लो, आज नहीं अगर आपकी जिंदगी में ईमान और इस्लाम, तो कल वहां फिर नहीं आएगा। वलौ अन्न लिल्लज़ीन आमनु फिल अर्दी जमीअन व मिस्लहु माहु। अगर जुल्म करने वालों के पास वो सब कुछ हो जो रुए जमीन पर है, और इसके साथ इतना ही और भी हो, तो भी बदतरीन सजा के बदले में क़यामत के दिन ये सब कुछ दे देंगे, और इनके सामने अल्लाह ताला की तरफ से वो जाखिर होगा जिसका वो गुमान भी नहीं करते थे। वहां सब कुछ दे देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं देना चाहते। जरा सोचिए, चोर आ जाता है ना तो गन पॉइंट पे चूड़ियां भी उतरवा लेता है। आराम दिनों में आप ज़कात भी ना दें चूड़ियों की, तो फिर क्या बनेगा? जो कुछ उन्होंने किया था इनकी बुराइयां इन पर खुल पड़ेंगी और जिसका वो मजाक करते थे वो इन्हें आंख हेरेगा। तो मौत के फरिश्ते जब आएंगे ना उस वक्त तो बंदा सब सब कुछ देगा, हैंड्स अप करेगा, सरेंडर करेगा, लेकिन बात यह है कि फायदा नहीं होगा। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अल्लाह इस जिंदगी में अल्लाह का बनने वाला और उसके हुक्मों पे चलने वाला बना दे। आयत 49 से 52, अल्लाह तला का एहसान और इंसान की नाशुक्री। फैजा मसल इंसान दुरुंदाना, इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम इसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा दें तो कहने लगता है कि इसे तो मैं महज अपने इल्म की वजह से दिया गया हूं, बल्कि यह आजमाइश है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग बेइल्म हैं। थोड़ा दिला इंसान, ऐसे लोग इस्तकामत की सीढ़ी से फौरन फिसल जाते हैं जहां या तो कोई नेमत आती है या कोई डरावा। अच्छे भले जमे जमाए, ये हो गया, बच्चा हो गया, जॉब मिल गई, शादी आ गई, पाकिस्तान चले गए, उम्रे पे जाकर नहीं लोग कभी पलटे। मैं कहती हूँ अब हज करके आएंगे, किधर है वो? नहीं, वो आए हुए आजकल दावतें पक रही हैं, आप घरों में मेहमान आए हैं, वो खाने पक रहे हैं, क्या आपको उम्रे की मुबारक देने आए हैं? अभी इसलिए नहीं आ रही, वैसे तो वो 15 दिन में आ गई थी। अच्छा वो क्या है जी, वो सब अलग अलग आए मुबारक। अच्छा नमाज पढ़ने की मुबारक देने आया था कोई इनको? ज़कात देते हैं तो आते हैं, हज उम्रे की मुबारकें क्या है? शौर ईमान नहीं है ये वही आपके ईमान का वो वर्जन है जिसको आप कह सकते हैं स्टैग्नेंट वर्जन। अल्लाह हमें इसे निकाल दे। और जब आप ये कहते हैं ना कि मैं तो अपने इल्म की वजह से दिया गया हूं, इसको हाईलाइट कर ले, कभी भी ये जुमला ना बोलिएगा। कभी अपनी किसी स्किल को, किसी खूबी को अपने साथ ना जोड़े, याद रखे लुढ़क जाएंगे। अल्लाह कहते जाओ फिर करके दिखाओ। ये बोलती जुबान एक सेकंड में खामोश हो सकती है, सुनते कान डेफ हो सकते हैं, लिखते हाथ सुन हो सकते हैं, अगर अल्लाह ना चाहे तो। हर नेमत को पकड़कर अल्लाह के नाम से जो उसका नाम लिख दें। आप किसी की चीजों पे अपना नाम क्यों लिखते हैं? कितना बड़ा जुर्म है आज की दुनिया में। आज से चंद साल पहले मैं जर्मनी में थी तो उनके इतना बड़ा केस चल रहा था, शायद 15 या 20 साल बाद किसी से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री वापिस ले ली। क्यों? PhD की थी, डॉक्टरेट मिल गई, बाद में पता चला रिसर्च में उसने खुद नहीं लिखा था, इधर उधर से कट एंड पेस्ट किया था। उन्होंने कहा वापस करो बेगम, सारी इज्जत हाथ में रखी, पूरे मीडिया पे अखबारों में डाल दिया कि कोई नहीं है ये डॉक्टर। क्या आखिरत में हम ये चाहेंगे? अल्लाह हमें बचा के रखे। आयत 50, इनसे अगले भी यही बात कह चुके हैं, बस इनकी कार्रवाई इनके कुछ काम न आई, फिर इनकी की हुई तमाम बुराइयां इन पर आम पड़ी, और इनमें से जो भी गुनाहगार हैं इनकी ही की हुई बुराइयां भी अब इन पर आ पड़ेंगी। ये हमें हरा देने वाले नहीं, क्या इन्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी। ईमान लाने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इन निशानियों से जोड़ दे, दिल में शऊर आ जाए, समझने लगे हमारे आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। आगे है जी आयत नंबर 53, कुरान पाक की सबसे ज्यादा उम्मीद अफसा आयत। गुनाहगारों को, ज्यादतियां किए हुओं को अल्लाह कैसे प्यार और मोहब्बत से बचाते हैं। और अगर अगली भी दो आयतें साथ जोड़ लें 55 तक, तो मोमिन कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह हमें ना तो खुद अपनी हिदायत से मायूस होने वाला बनाए और ना बेचारे लुढ़कते पुढ़कते हिदायत की तरफ आने वालों को हम मायूस कर दें। आइए बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, और ये अंदाज बड़ा अछूता है, बहुत कम है कुरान पाक में ये अंदाज। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी जानिब से कह दो कि मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। ये है सीकर्स ऑफ दी गाइडेंस के लिए पैगाम। कितने दिन से लुढ़कते पुढ़कते सुन ही रहे थे, अल्लाह ने आज पुकार लिया आपको, आपका हाथ थाम लिया अल्लाह ने। क्या हो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मेरी नजरों में कितने प्यारे हो। या इबादी कहा, गुनाह वालों को पुकारा, नेकियों वालों को नहीं बुलाया। ये नहीं कहा कि कुल या इबादी अल्लज़ीन तक़ौ अल्लज़ीन सलौ, नमाज पढ़ी। ऐलान है कसरत से गुनाह करने वालों को भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। बिल यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, वाकई वो बड़ी बख्शिश और रहमत वाला है। तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक पड़ो। करना क्या है ये काम है, अनीबु इला रब्बिकुम, फिर वस्लिमो, और इसके हुक्म बरदारी करते जाओ, इससे कबल के तुम्हारे पास अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। और तीसरा काम ये करना है अब तुमने इस दौरे कुरान के बाद, और पैरवी करो इस बेहतरीन चीज की जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें इत्तला भी ना हो। क्या खूबसूरत अंदाज है, सच्ची पक्की तौबा के बाद सब गुनाह माफ। वो कहते ना कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके इन फियाल के, यानी अपने गुनाहों का सोच के जो माथे पे पसीना आया ना शर्म के मारे, अल्लाह ने उनको मोती समझ के रख लिया है। कल अल्लाह आपको उसके बदले में बहुत कुछ देने वाला है। और अब आगे आयत 56 से 59 में तौबा न करने वालों की हसरत भी है और अजाब आने से पहले सच्ची तौबा करने की दावत भी है। पढ़ के फिर हम तरतीब से देखते हैं। अंतकूल नफ्सुन या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्ला, रो सकें तो रोइये इन आयतों को पढ़ते सुनते हुए, दिल को नरम करके सुनेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सुनेंगे तो बात होगी। हम कहते हैं ये उनके लिए, वो जो दूर, वो जो सुनते ही नहीं, नहीं जी ये मेरे आपके लिए। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह के हक में कुताही की, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में ही रहा, उससे भी ज्यादा हिदायत से दूर था। या ये कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत करता तो मैं भी नेक लोगों में होता। या अजाब को देखकर कहे काश कि मेरी तरफ काश किसी तरह मेरा लौट जाना हो तो वे मैं भी नेकुकार लोगों में हो जाता। हाँ हाँ बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंच चुकी थी जिन्हें तूने झुटलाया और गरूर व तकब्बुर किया। आयतें तो पहुंच रही हैं, आगे क्या होगा। आयत 60 से 66, अल्लाह पे भरोसा करो। वयौम अल-क़ियामत तरा अल्लज़ीना कसबू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा, और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा तो आप देखेंगे कि क़यामत के दिन इनके चेहरे स्याह होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं। अब जवाब मैंने आपने देना। और जिन लोगों ने परहेजगारी की इन्हें अल्लाह ताला इनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा, इन्हें कोई दुख छू भी ना सकेगा और न वो किसी तरह गमगीन होंगे। अल्लाह ताला हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर निगेबान है। आसमानों और जमीन की कुंजियों का मालिक वही है। जिन जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही खसारा पाने वाले हैं। आप कह दीजिए कह जाहिलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत को कहते हो। यकीनन मेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई कि अगर तूने शिर्क किया तो बिला शुबा तेरा अमल जाया हो जाएगा और यकीनन तो नुकसान पाने वालों में हो जाएगा। बल्कि बात तो ये है कि अल्लाह ही की इबादत कर और शुक्र करने वालों में से हो जा। और ये सब कुछ क्यों हुआ। आयत 67 इसका ततीमा है। वमा कदरुल्लाह हक कदरी, लोगों ने अल्लाह की वो कदर न जानी, उसकी बड़ाइयों का तस्करा है, और इन लोगों ने जैसी अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी नहीं की। सारी जमीन क़यामत के दिन इसकी मुट्ठी में होगी और तमाम जमीन इसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे और तमाम आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज से जिसे लोग इसका शरीक बनाएं। असल ये मसला था। आप देखिए कि आयत 54 से बात शुरू हुई और यहां तक अल्लाह ताला ने जो तरतीब रखी चंद जुमलों में नोट कीजिएगा। पहले सच्ची तौबा की दावत दी और वो तौबा क्या होती है। नंबर एक, अपने पिछले गुनाहों पे नदामत हो, अन नदमु तौबा, हदीस के दो लफ्ज याद कर लीजिए। दूसरी शर्त है तौबा की के गुनाहों को छोड़ने का वादा किया जाए। तीसरी बात, गुनाहों को बिलफेल छोड़कर तौबा की सच्चाई साबित की जाए, यानी झूठी तौबा ना हो फिर बाकी गुनाहों को छोड़िए। फिर अगली शर्त क्या है कि अगर किसी का हक मारा है तो लौटा दिया जाए या फिर उससे माफ करा लिया जाए, और ये कहां होगा, हकूकुल इबाद में, मामलात में। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी के साथ ज्यादती की है तो इसे माफी हासिल की जाए, और आइंदा जिंदगी اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کی جائے, اور پھر اللہ کے احکامات پر انتہائی خوبصورتی اور ذوق اور شوق سے عمل کی کوشش کی جائے, تو پھر آپ استقامت کے درجے پہ پہنچیں گے. آج بھی شروع کر دیا نا یہ سفر, تو اگلے سال رمضان سے پہلے پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ چکے ہوں گے, اور اللہ آپ سب کو کبھی یا پیچھے نہ کرے, استقامت کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ جوڑے ہی رکھے. پھر آیت 56 سے 59 میں ہم نے کچھ حسرتیں دیکھی ہیں, توبہ نہ کرنے والوں کی حسرتیں, وہ بد نصیب جو سارا سن پڑھ بتا کر پھر لوگوں کے پریشر میں آگے یا نفس کے دباؤ میں آگے اور استقامت کے درجے پہ نہ آئے تو اچانک عذاب آئے گا, تو گناہوں پہ حسرت, عذابوں اور وعیدوں کو سنجیدگی سے سنا ہی نہیں, سنی انسنی کر دی. پھر وہاں کاش کاش کاش, ہائے ہم متقی بنتے, ہائے اللہ چھوڑ دے, ہائے محسن بنا دے, لیکن وہاں یہ باتیں کام نہیں آئیں گی, تو وقت ابھی ہے. کل ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جو آج آپ کرتے تو ہو جاتی اور اللہ آپ کا ریزلٹ بدل دیتا. پیپر کے دوران ہی اسٹوڈینٹ جو بدل لے لکھ لے, بعد میں ایک دفعہ پیپر چھن گیا تو پھر کون لکھنے دیتا ہے. اور پھر آئے 60 اور 61 میں روزے قیامت کے اچھے اور برے انجام دیکھ لیے تھے, تکبر والوں کا ٹھکانہ بھی اور اللہ کی بات ماننے والوں کا. اور آئے 62 سے 63 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. کیا ہوا اگر مشکل آئی, میرا رب ہے نا میرے ساتھ. اسی سے پھر آپ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں طے کرتے استقامت کے درجے پہ 100ویں درجے پہ بھی چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. ہدایت کی وہ سیڑھی ذہن میں لے آئیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, یہ احساس بندے کو بہت کچھ دیتا ہے. اور آیت 64 سے 66 میں آپ نے باطل کے ساتھ سمجھوتوں کی زوردار نفی پڑھی ہے. مکہ والے نبی پر بہت دباؤ ڈال رہے تھے ان دنوں پہ, تو اللہ نے نبی کے دل کو جما دیا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ کیوں مانیں ان کی. ود لو تدخنوا فیدخنون, آج ایک منوائیں گے کل دوسری پہ لے آئیں گے, اور آج بھی لکھ لیں. استقامت سے جو چیز ہٹاتی ہے وہ یہ سمجھوتے, چلو بیگم ایک بات مان لو. اور یہاں میں نہ بولوں, ہماری ایک بڑی اچھی سسٹر تھی پاکستان سے, بڑے اچھے ادارے سے کورس کر کے آئیں امریکہ میں, جب مجھے ملی آج سے کئی سال گزر گئے, اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے جوائن کیا اور رہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب کورس کر کے امریکہ آئی تھی تو میں خوف زدہ تھی, شادی ہو رہی ہے میرا کیا بنے گا, ڈرتی دھپکتی تھی, لیکن پھر ایک وہ دن جب میں نے اپنے شوہر کے کہنے پہ صرف نقاب ہٹایا کہ بیگم بس نقاب ہٹاؤ, امریکہ میں لوگ نقاب نہیں کرتے, اور اس کے بعد جب وہ مجھے بھی سال الیے میں ملی تھی, میں تو سمجھی بھی نہیں کہ یہ قرآن کا ایک پورا کورس کر کے آئی ہوئی ہے, تو وہ روتی تھی, کاش میں نے اپنے شوہر کی وہ پہلی بات نہ مانی ہوتی تو مجھے اس کی پھر دوسری نہ ماننی پڑتی, اور پھر من بھی چاہتا ہے مان لو, پھر اپنا بھی دل بدل جاتا ہے. تو یاد رکھیے, ایک جملہ لکھ لیں اپنے دل میں, ایک مانیں گے تو کل دوسری ماننی پڑے گی. یہی اصول آپ کے اپنے نفس کی باتوں پہ اور یہی آپ کے باہر کے ماحول میں ہے. علامہ اقبال اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. کہتے ہیں حق کے معاملے میں کبھی کچھ بھی قبول نہ کرو, آپ اس درجے پہ آئیں گے پھر استقامت ملے گی, ورنہ ایک پھول لگائیے اور ایک اتار لیں تو کھیتی کیسے تیار ہوگی. نیکیوں کے باغ انہی کے لگتے ہیں جو پچھلے پھولوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں, پچھلی نیکیوں کو توڑتے جائیں اور آگے بڑی بڑی نیکیاں کرتے جائیں, اور یقین کریں بعد میں صرف روایتی نیکیاں رہ جاتی ہیں. رمضان آیا تو روایتی افطاریاں, اور آگے آپ کہہ لیجئے کہ ربیع الاول تو میلاد کرا لیا, اور رجب آیا تو کنڈے بھر لیے, اور باقی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ تو کوئی استقامت دکھتی نہیں. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. قیامت کے کچھ مناظر ہیں آگے ہمارے پاس, آئے 68 سے آگے آنورڈ 70 تک. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, اور سور پھونک دیا جائے گا, پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے, مگر جسے اللہ چاہے, پھر دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا, پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے, اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. امیجن کریے, سورج نکلتا ہے تو زمین پہ پڑے ہوئے ذرے بھی چمکتے ہیں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, کیا خوبصورت دن ہوگا. ویسے اگر اپنی فکر نہ ہونا بندے کو, سچی بات ہے, تو قیامت کا دن ہوگا بڑا انٹرسٹنگ. جیسے آپ راہ جاتے کھڑے, کبھی ایئرپورٹ پہ کسی کے انتظار میں کھڑے ہونا تو آپ دیکھتے رہتے ہیں, ٹولیاں آ رہی ہیں, ٹولیاں جا رہی ہیں, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی اس کو مل رہا ہے, کوئی اس کو مل رہا ہے, تو قیامت کا میدان بڑا ہی کہہ لیجیے کہ لائیولی قسم کا میدان ہوگا. वबुदी अल किताब वजी अबिन नबीजीन। नामे अमाल हाजिर किए जाएंगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक के 10 फैसले कर दिए जाएंगे और उन पर जरा भी जुल्म न किया जाएगा। और जिस शख्स ने जो कुछ किया भरपूर दिया जाएगा, जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। क्यामत का दिन है, सारी जमीन अल्लाह की मुट्ठी में, आसमान दाएं हाथ में, उसकी अजमत और उसकी बड़ाई का इजहार है। हर शिर्क की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी निशानी खत्म हो चुकी होगी और सूर्य जब फूकेगा तो सारी मखलूक दोबारा खड़ी होगी और अल्लाह आसमान दुनिया पर आएंगे। पता नहीं वो कहाँ होगा, क्या होगा, बस आसमानों से जमीन पे नजूल है और हिसाब होगा इंसानों का। और वो नूरे रब्बानी कि दुनिया जगमगाए, यही नूरे रब्बानी जब अंदर मोमिन के दिल पे नूरे वही की सूरत में आता है ना, तो दिल भी जगमगाता है और ऐसे लोग फिर इस्तकामत के दर्जे पे होते हैं। ये ढिलमिल यकीन वाले कहाँ पहुंचेंगे आगे, छोड़ो इनको, आप वॉक करें ना, जो ढीला डाला आप कहते हैं ये नहीं चलेगा, इसने तो अभी थोड़ी देर फिर बैठ जाना, आगे चलो, कोई तेज चल रहा है तो उसका साथ ले लेते हैं। आप नेकियों में अपने साथ तेज चलने वालों को लिया करें, ढीले डाले लोगों को कहे अच्छा भाई आप जो कर रहे हैं अल्लाह आपको कबूल करे, नेक्स्ट आगे चलिए। ठीरे ढालों के साथ रहने वाले फिर आप भी कहा चलो फिर आज वॉक नहीं करते, इतना ही बहुत है, थक गए। ये मैं रोज देखती हूँ इर्द गिर्द में। मत उन लोगों को आजमाए जो बेचारे कभी एक कदम ना चले, आप उनको एक मील चलने की दावत दें, हिम्मत ही तोड़ देते हैं। तो अपनी जिंदगी में चेंज लाइए, अपने अंदर छांटी कीजिए, अपने इर्द गिर्द वालों को छांटिए, जो तेज चल रहे हैं, जो खूब चल रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, जो भाग रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, ज्वाइन दम। और हक के रास्ते पे ये शर्त होनी चाहिए ना, पता चले कि आप गलत जगह पहुंच गए, फिर इंशाल्लाह आपको इस्तकामत मिलेगी। और जब ये नूरे रब्बानी मिल जाता है तो जिंदगी फिर थोड़ी लगती है और काम ज्यादा है कि वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। अभी पूरी दुनिया में शिर्क फैला हुआ है, अब तो और भी उसके बच्चे पैदा हो गए, तो आप और मैं कैसे बैठे कैसे सोए। लाइए वो तसव्वुर में ज़हन, जब आपका नाम अमल आपको मिल रहा है और अंबिया कराम और दीगर गवाह आपके अमाल पर गवाही देंगे, शर्म नहीं आएगी, भीगी बिल्लियां बनकर वहां छुप रहे होंगे। अल्लाह इस बात को बुनियाद बनाकर तीन से हटी थी, ये थी मेरी मजबूरी, जितनी मैं छोटी उतनी मेरी मजबूरी छोटी, जितनी मैं हकीर उतनी हकीर चीज मेरी मजबूरी, ये बतन और फर्ज का तकाजा था जो मुझे तेरे दीन से रोकता था। और याद रखे इंसान का इंजाम कार उसके अमाल के मुताबिक होगा, कोई ना इंसाफी नहीं होगी। और अब आगे 71-72 कुफार की जहन्नुम की तरफ रवानगी, नेक्स्ट स्लॉट देखिए मैदान मख्शर का। वसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों के गौल जहन्नुम की तरफ हंकाए जाएंगे, जब वो इनके पास पहुंच जाएंगे तो इसके दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे और वहां के निगेबान इनसे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे। क्या बनेगी उस वक्त अबू जहल की कैफियत और क्या होगा उस वक्त उतबा और शहबा का हाल, नबी सबसे प्यारा नबी उनके सामने खड़ा पुकार है और उनके कान पे जूनी रिंगती। आप और मैं किस खेत की मूली हैं जिनकी दावत पे कोई प्यार से आ जाए, मेरा तो प्यार कोई नहीं मानता, गुस्सा कौन मानेगा। रसूल खड़े हैं बुला रहे हैं और तुम नहीं आए, जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें सिन की मुलाकात से डराते थे, जो ये जवाब देंगे कि हाँ दुरुस्त है लेकिन अजाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया, अब रिजल्ट नहीं बदल सकता, इट्स कन्फर्म्ड 100% कन्फर्म्ड। कहा जाएगा कि अब जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ जहां हमेशा रहोगे, बस सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। कोई चाहता ऐसा हो, कोई भी नहीं चाहता, तो फिर क्यों पीछे हटते हैं, फिर सारी बातें समझकर फिर कुफर पे फिर शिर्क पे फिर अपने आप को न शुक्रियों पे रखते हैं। अल्लाह मला तजलना मिनहुम, अल्लाह मजिरना मिना नार, ये दुआ शुरू करते हैं कि अल्लाह मुझे आग में न डालना। और अब आगे तस्वीर का दूसरा रुख 73-75 सूरत का ततिमा। वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, मुत्तकियों की जन्नत की तरफ आमद, मुत्तकियों की जन्नत की तरफ आमद है और उनको खुश आमदेद कहा जा रहा है, वेलकम वेलकोमन खुश आमदेद। और जो लोग अपने रब से डरते थे इनके गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहां तक कि जब इनके पास आ जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहां के निगेबान इनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो। इस्लाम होगा तो सलाम होगा, नाम का इस्लाम वहां नहीं चलेगा, अमल का इस्लाम, इसकाल लहु रब्बुहु अस्लिम वाला इस्लाम, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन वाला इस्लाम, कुफर के अंधेरों में आंख उठाने वाले इब्राहिम वाला इस्लाम चाहिए आज मुझे आपको। हमारे इर्द गिर्द भी अंधेरे हैं, तुम पाकीजा हो, तुम इसमें हमेशा के लिए चले जाओ, नो यू टर्न। एक दफा जन्नत का दरवाजा खुला तो अंदर से नहीं खुलेगा दोबारा, वापसी नहीं है। जैसे इमरजेंसी एग्जिट होता है ना, अंदर से खुलेगा बाहर से नहीं खुलता। ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया। जरा से इस खुशी को तो महसूस कीजिए, ये है इस्तकामत वाले। हम हजरत उमर कहा करते थे, मेरा एक पांव जन्नत में और एक बाहर हो, मैं फिर भी नहीं कहता कि मैं जन्नती हूँ। जब ये वक्त आएगा तो बात बनेगी। कालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहु वाओरसनल अर्दा नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा फनीमा अजरुल आमिलीन। अल्लाह का शुक्र जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें इस जमीन का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहां चाहे मुकाम कर ले। बस अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। याद कीजिए सूरत अल आराफ की वो आयत, जन्नती जन्नत के दरवाजे पे क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना। याद आ गई, वहां भी अलहमद की बात है, यहां भी लिख लेना, शुक्रे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। एक ना शुक्रा यानी नेगेटिव अप्रोच वाला बंदा जन्नत में आ गया, सारी जन्नत का माहौल बिगाड़ देगा, वहां भी लड़ाइयां करेगा। एक चुगलखोर, एक लड़ाइयां करवाने वाला वहां पहुंच गया, वहां पता नहीं क्या माहौल बनेगा। तो जन्नत शुक्र गुजारों की जगह है। जन्नत का सबसे ज्यादा हुसन लोग हैं जो वहां जाएंगे, जिनके दिल शीशों की तरह साफ होंगे और पाक होंगे। और अमल का बदला है, दुआओं का नहीं है, ख्वाहिशों का नहीं है। ख्वाहिशें और दुआएं भी तभी काम करेंगी जब अमल जन्नत वाले होंगे। और तू फरिश्तों को अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की हमदो तस्बीह करते हुए देखेगा और इनमें इंसाफ का फैसला किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि सारी खूबी अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। जरा सा रुकिए इस आयत पे, वकील अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चार दफा ये जुमला है कुरान में, सूरत फातिहा में तो आप पढ़ते ही हैं, यहां भी देखें और यहां लफ्ज रब को देख ले। ये है इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह को रब बनाएंगे तो बात बनेगी और रब को इलाह बनाएंगे तो बात बनेगी। इसकी तड़प है, इसके लिए जीते हैं, इसके लिए मरते हैं, इसके लिए हर रोज सुबह उठकर घर से निकलते हैं और इसके लिए इंसान तड़पता और तमन्नाएं करता है। और कैसे अल्लाह ने वहां दरवाजे पे खड़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तख्ती लगवा दी। अल्लाह मुझे आपको न शुक्राना बनाए। इस कुरान की दौलत को पाने के बाद अगर मैं आग में चली गई तो इससे बड़ा मेरे लिए खसारा नहीं है। अल्लाह ताला आसान फरमाए। दुआ करें अपने लिए और सबके लिए। आगे सूरत गाफिर है जिसका दूसरा नाम सूरत मोमिन भी है और सूरत बड़ी प्यारी सिफात के साथ शुरू होती है अल्लाह के नामों की। तरतीब से 40 नंबर की सूरत है और 85 आयतें जो हम इसमें पढ़ेंगे। इसका मेन टॉपिक लिख लीजिए, शिर्क फिद दुआ। अल्लाह से दुआएं मांगने के नाते से जो शिर्क होता है और बड़ी अहम है, यानी ये सूरत भी तौहीद अमली के इसी पहलू को उजागर करती है कि इंसान अपनी इताअत को अल्लाह के लिए खालिस करे और सिर्फ उसी से दुआ मांगे। 80% शिर्क दुआओं के नाते से होता है, आप जानते ही हैं ये बात। तो आयात का तजिया करते हैं, 1-6 अजमत और जलाल बारी ताला, 7-9 फरिश्तों के अहले ईमान के लिए खुशकुन दुआएं। कान लगाइएगा इन दुआओं पर, बड़ी प्यारी दुआएं कर रहे हैं फरिश्ते आपके लिए। आयत 10-22 मज़ामीन इबरत और मौइज़त हैं। 23-46 आले फिरौन की सरकशी और इंजाम, 47-50 अहले जहन्नुम की फरियाद और 51-75 अल्लाह ताला के एहसानात और बंदों की नशुक्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह की तीन बड़ी शानों के साथ आयत भी शुरू हो रही है और दुआ अल्लाह ताला से ही मांगनी है, ये टॉपिक है इसका। हामीम इस किताब का नाजिल फरमाना इस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह का बख्शने वाला। देखिए यहाँ जम बेजुनूब नहीं, सिर्फ एक गुनाह बख्श दे तो बड़ी बात है, बहुत ही कुछ ऐसे एक लफ्ज में। और तौबा कबूल फरमाने वाला, सख्त अजाब वाला, इनाम और कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की तरफ वापिस लौटना है। ये है जी वो आयात जो असल में अल्लाह का तारुफ है। आपसे कोई कहना कि अल्लाह की शायान शान कोई आयत बताओ तो ये आयत है जो इस बात की मजर है कि सिर्फ वही हस्ती है जिससे दुआ मांगो और जो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकता है। लोगों को अपने गुनाह मत बताओ, वो जबरदस्त है, दुआएं कबूल करता है, उसको पता है बंदे की क्या हाजात है, शदीद सजा भी दे सकता है और बख्शने वाला है, उसका कोई हाथ नहीं थाम सकता। अल्लाह हमें उसी रब के आगे झुकने वाला बना दे। आयत 4-6, कुफार का बुरा अंजाम। मा युजादिलु फी आयतिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू, अल्लाह तआला की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, बस इनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। कौम नूह ने और इनके बाद के गिरोहों ने भी छुटलाया था और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया और बातिल के जरिए झूठे बहस मुबासे किए ताकि इनसे हक को बिगाड़ दें। बस मैंने इनको पकड़ लिया सो मेरी तरफ से कैसी सजा हुई। और इसी तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो दोस्ती हैं, क्योंकि उनको जन्नत नहीं चाहिए थी, उन्होंने मांगी नहीं। क्या पता चला कि जो मांगो वही मिलेगा। आज दुनिया में अल्लाह की रजा मांगेंगे तो जन्नत मिलेगी, और अगर आपको सिर्फ अपने ही मनपसंद तौर तरीके अच्छे लगते हैं तो अल्लाह आपको फिर मायूस नहीं करेगा। आयत 7-9 बहुत प्यारी आयतें हैं, तवज्जो से सुनने वाली। फरिश्तों की अहले ईमान के लिए दिल को खुश करने वाली दुआएं, दूसरे लफ्जों में आपकी हामिलीने अर्श की दुआएं तौबा करने वालों के हक में। और यहां वो लोग जो वाकई सीकर्स ऑफ दी गाइडेंस हैं उनके लिए आज फिर एक मौका बन रहा है तौबा का। आइए सुनते हैं। अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श वमन हौलहू युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अर्श के उठाने वाले और इसके पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम के साथ करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, कहते हैं कि हमारे परवरदिगार तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस इन्हें बख्श दे कि वो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें और तू इन्हें दोजख के अजाब से भी बचा ले। क्या बात है, आप तौबा कर फरिश्तों की दुआएं लेने लग गए, इससे भी बड़े खुशकिस्मत। जी सिर्फ आप नहीं, आपके बीवी बच्चों और आपकी औलादों को भी दुआएं मिल रही हैं। कहाँ? ऐ हमारे रब, तू इन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया, और इनके बाप दादों और बीवियों और औलादों में से भी इन सब को जो नेक अमल करते हैं। यकीनन तू गालिब और वाह हिकमत है और इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक तो यह है कि इस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया इस पर तूने रहमत कर दी, और बहुत बड़ी कामयाबी तो यही है। कौन नहीं लेना चाहता ये दुआएं? ये है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इस्तक़ामत के साथ जमे रहने वाले तौबा करने के बाद पलटते नहीं है। मुकर्रबीन फरिश्ते, सबसे ऊंचा मुकाम है अर्श उठाने वाले फरिश्तों का, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुकाम से अगर आप हटाकर बात करें तो बात देख लीजिए। आप इंसानों के लिए रोते हैं, आपके लिए दुआएं करें, फरिश्ते मांग रहे हैं। इंसानों के तो कई गुना, फरिश्तों के तो गुना भी नहीं, मासूम। फिर बाप दादा औलाद और बीवियों को जन्नत की नेमत मिल जाए, फरिश्तों की दुआएं लगेंगी कि नहीं लगेंगी? अल्लाह हमें ऐसे काम करने वाला बना दे कि हम फरिश्तों की दुआएं लें। इस पूरे बारे में आपको फरिश्तों का बहुत तज़किरा मिल रहा है। आगे आए 10-13, अहले जहन्नुम की बेजारी भी है और उनका बुरा अंजाम। इन्नल्लज़ीना कफरू युनादौना लमक्तुल्लाहि अकबरु मिन मक्तिकुम अन्फुसिकुम, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया इन्हें आवाज दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुमसे बेजार होना इससे बहुत ज्यादा है जब तुम बेजार होते थे अपने जी से। जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे फिर कुफर करने लगते थे। वो कहेंगे हमारे परवरदिगार तूने हमें दो बार मारा और दो ही बार जिंदा किया, अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं, तो क्या अब कोई राह है निकलने की? अब क्या फायदा? जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर अगर बेजार हुए तो क्या मिला? जवाब सुन लीजिए। यह सब तुम्हें इसलिए दिया जाता है जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। देखिए आज भी लोग कहते नहीं, अल्लाह के साथ मारो, इन बड़ों को भी मानो, इन बुजुर्गों को और इन बुतों को और इन हमारे आइडल्स को मानो, फिर तुम बड़े खुश होते थे। और आज लोग कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। तो भाई अल्लाह को मानना तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपकी फितरत में है। जवाब अल्लाह का सुन लीजिए, बस अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग को बरतर का ही है, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है, और नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। अल्लाह में आज रजू करने वाला बना दे। दुनिया में बहुत आसान है ठुकराना छुटलाना, वहां बहुत मुश्किल होगा। आज बेजार होते हैं इस्लाम का नाम सुनकर, एक तौहीद की बात सुनकर, वहां परेशान होंगे अपने उन खुद साख्ता खुदाओं को देखकर कि जिनको पूछते हुए जिनकी तरफ जाते हुए अल्लाह को नाराज कर गया। आयत 14 से 15, अल्लाह को मुखलिस होकर पुकारना है। फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलो करिहल काफिरून, तुम अल्लाह को पुकारते रहो इसके लिए दीन को खालिस करके, गो के काफिर बुरा माने। इस्तकामत का पैगाम है इसमें। बुलंद दर्जो वाला अर्श का मालिक वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए। आयत 16 से 20, क्यामत में अमाल का पूरा बदला मिलने वाला। यौमहुम बारिजून अला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शैयुन, जिस दिन ये सब लोग जाहिर कर दिए जाएंगे इनकी कोई चीज अल्लाह से पोशीदा न रहेगी। आज किसकी बादशाही है? सवाल सुनिए, लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, फकत अल्लाह वाहिदे का हार की, अल्लाह खुद जवाब दे रहे हैं। आज हर नफ्स को इसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी किस्म का जुल्म नहीं, यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और इन्हें बहुत ही करीब आने वाले दिन से यानी क़यामत से आगाह कर दीजिए, जबकि गम के मारे दिल हलक तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश होंगे। जालिमों का कोई दिली दोस्त होगा ना सिफारशी के जिसकी बात मानी जाए, वो आंखों की खयानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। और अल्लाह ताला ठीक ठीक फैसला कर देगा। इसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनता खूब देखता है। क्या खूबसूरत तरीके से रोजे क़यामत अल्लाह के सामने हाजिरी का तस्करा भी आ गया, अल्लाह के बादशाह हकीकी होने का तस्करा भी आ गया, और आखिरत के दिल हिला देने वाले मनाजिर भी देख लिए, और अल्लाह के नबी का लोगों को बुलाते रहना देख लिया, और दिलों का हलक में उछल उछल कर आना आ गया, खौफ के मारे आंखों का पथराना पड़ लिया, कोई दोस्त सिफारशी काम ना आएगा। कितना कुछ पढ़ लिया इन आयतों में और दिल के इरादे नियतें और आंखों की खयानतें खुल के आ गईं और कोई खुद साख्ता माबूद वहां काम नहीं आ रहा। क्या बना? अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। अब आगे आयत 21 से 27 हजरत मूसा और फिरौन का किस्सा है इबरत के नाम पर, यानी तारीख से सबक ले लो। माजी में जो बड़ी बड़ी कौमें गुजरी, जो वसाइल और कुव्वत में इंतहाई ताकतवर और शान शौकत में बड़ी नुमायां थी, लेकिन बदकिस्मती से वो नाफरमान और बागी थी। अल्लाह के रसूलों ने वाज़े दलाइल और पूरी दिलसोजी के साथ उनकी इसलाह की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माने और सरकश ही होते गए, तकबर ही रहा, तो अल्लाह ने उनको बर्बाद और तबाह किया और कोई उन्हें अल्लाह की पकड़ से बचा ना सका। तो अल्लाह ताला यहाँ अब दोबारा किस्से की सूरत में सुनाते हैं किस्सा मूसा और फिरौन। अवलम यसीरु फिल अर्दि फयंजुरु कैफ काना आकिबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, क्या ये लोग जमीन पर चले फिरे नहीं कि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे इनका नतीजा कैसा हुआ, वो एतबारे कुव्वत और ताकत के और अपनी जमीन में यादगारें कायम करने के एतबार से बहुत ज्यादा थे। यानी इस बात में ना रहो कि तुम ही बहुत अच्छे हो, पहले लोग तुमसे ज्यादा तरक्की किए हुए थे, उन्होंने जमीन में बड़ी बड़ी मेमोरियल थिंग्स कायम की रखी थी। बस अल्लाह ने इन्हें इन गुनाहों पर पकड़ लिया और कोई न हुआ जो इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेता। ये इस वजह से कि इनके पास इनके पैगंबर मौजे ले लेकर आते थे तो वो इनकार कर देते थे, बस अल्लाह इन्हें पकड़ लेता था, यकीनन वो ताकतवर और सख्त अजाब वाला है। क्या पता चला कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई बचा नहीं सकता। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा फिरौन हामान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर और झूठा है। देखिये जरा क्या क्या इल्जाम लगते हैं इस रस्ते में। پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو اور کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ تو غلطی میں ہی رہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ بیچارے بھی زندگی کے پہلے دن کیا دوسرے چند دنوں سے ہی خطروں میں تھے، دریا میں نہ ڈوبے، اللہ نے بچایا، وہ آج آپ کو بھی بچائے گا۔ دیکھیے وہ رب جس نے موسیٰ کو ڈوبنے سے بچا لیا، مچھلی کے پیٹ سے اپنے پیارے نبی یونس کو بچا لیا، آگ میں سے ابراہیم کو بچا لیا، کیا آپ کو نہیں بچائے گا؟ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب کو رب کہتے جائیے، وہ آپ کو بچاتا رہے گا۔ فرعون نے کئی بار موسیٰ کو مارنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے بچا دیا۔ اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر سے۔ کون؟ وہ شخص جس کی برائی ہوگی، یعنی ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آج بھی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے امت مسلمہ کو، اوور آل دنیا میں اسلام کے خلاف چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ اپنے وقت کے فرعون نے جو چاہا اللہ نے اس کے ارادوں کو نیست و نابود کر دیا، اور موسیٰ کو استقامت دی، موسیٰ کی ماں کو استقامت دی۔ جب جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو دشمن ایک وقت آتا ہے کہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور پتہ کیا چلا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے جو ناپاک منصوبے فرعون نے بنائے تھے، اللہ نے انہی لوگوں کو پکڑ کر موسیٰ کا ہم نوا بنا دیا، اور وہ سارے جادوگر۔ اور یہ ساری کہانیاں آپ پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں آپ کو اب ایک نیا کردار ملنے لگا جس کا تذکرہ پیچھے نہیں ہوا، اور اسی کے نام پہ یہ سورت مومن ہے۔ آیت 28 سے 44 تک مرد مومن کا کردار بھی ہے، اور مومن آل فرعون کا عمران افروز کلمہ حق کہنا، اور آگے پھر جادوگروں اور باقی طویل کہانیاں ہیں موسیٰ اور فرعون کے قصے کی۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، اور یہاں لکھے یہ آپ کے اس پارے کا ہیرو بھی ہے، استقامت کی تصویر مرد مومن۔ اللہ مجھے آپ کو بھی بنا دے اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے خاندانوں میں استقامت کی مثال۔ اور ایک مومن مرد نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ہائی لائٹ کر رہے ہیں آگے وہی جملہ جو آج آپ پڑھ رہے ہیں اس بارے میں، کیا صرف اس بیچارے کا یہی قصور ہے کہ وہ اللہ کو ایک کہتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے؟ دیکھیے لوگوں کو بڑے برے لگتے ہیں اللہ کو ایک کہنے والے۔ لوگ کہتے نہیں ہمیں بھی مانو، ہماری طرف بھی چلو، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہماری بھی باتیں ہیں، وہ دس دیٹ، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگ آپ کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا تم مت برا کہو، مت برا کرو اس بندے کے ساتھ جو اپنے رب کو رب کہتا ہے، تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑتا۔ لیکن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، جیلس فیل کرتے ہیں جب بندہ صرف رب کو پکارنے لگے، اور پھر ایسے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، راہ جاتے۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، آئی 28 کا یہ جملہ ہائی لائٹ کیجیے، ایگزیکٹلی یہی لفظ ابو بکر صدیق نے بھی بولے تھے مکی دور کے شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی جاتی تھی، تو آپ یہی کہتے تھے کہ ایک بندہ رب کا بن رہا ہے تو تم اس کو کہہ رہے، تمہیں کیا کہتا ہے؟ آج بھی وہ استقامت والا بندوں کو کچھ نہیں کہتا، لیکن لوگوں کو چپتا ہے، کیونکہ وہ قلق ہوتا ہے نا، خفت ہوتی ہے کہ اب یہ خود اچھا بن گیا تو ہمیں بھی برا بننے پہ روکے گا ٹوکے گا۔ تو کہا کہ تم ایسے بندے کو کہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ، اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر، اور اگر سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ کیا پتہ چلا آئی 28 میں کہ ہدایت تو صرف حدود اللہ میں رہنے والوں کو ملے گی، اللہ کی حدوں کو پامال کر کے ہدایت نہیں ملتی۔ پھر آئی 28 میں آپ دیکھیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب کی بات ہے، تو تھوڑی سی بات کریں گے جھوٹ پہ۔ جھوٹا بندہ کبھی استقامت پہ نہیں رہے گا۔ جھوٹ کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ کہ جھوٹ بولنے والا شخص نعمت ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان والے ہی دوسروں کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، حد سے گزرنے والے اور جھوٹے شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راہنمائی نہیں فرماتا، हर झूठे और गुनाहगार शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है। जिंदगी से झूठ को निकाल दीजिए, खुरच के निकाल दें। झूठी कहानियां, झूठे सच्ची किस्से, फिक्शन जिंदगी से निकल जाए। झूठ को फिक्शन कहकर तौबा कर लीजिए। अल्लाह आपको बहुत नेकियों के मौके देगा और इस्तकामत देगा। आज कितने लोग सिर्फ इसलिए हिदायत पे नहीं आते कि फिक्शन अच्छा लगता है। 3 घंटे की फिल्म देख लेंगे, दौरे कुरान नहीं सुनेंगे, ड्रामे देखेंगे, किस्त बार चलेंगी, लॉन्ग टर्म से स्टोरीज होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म कोर्सेज को कमिट नहीं करेंगे। अल्लाह निकाल दे दिलों से ये सब मोहब्बतें। फिर आज देखिए 28 में, झूठ से जितनी दूरी जन्नत से उतनी ही नजदीकी, ये स्लोगन बना लीजिए। झूठे और गुनाहगार शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है। झूठ से बचें, झूठ बदकारी पर उभरता। सुनी सुनाई बातों को फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है। तंजो मजाम में भी झूठ दुनिया और आखिरत में तबाही का बायस होगा और वैल नाम की जहन्नुम में जाना पड़ेगा। अल्लाह हम सब को जहन्नुम से बचा ले। आगे देखिए, क्या पता चला कि मर्द मोमिन ने जो बातें कही थी वो सारी अपने अंदर हक रखती थी, इसका असर था। लेकिन फिरौन चूंकि अपने आप को बड़ा समझता था, मुतकब्बिर था, तो वो ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता था, वही करेगा जो आप अभी देखेंगे। और फिरौन का ये खदशा आपने देखा कि हमारे लाइफस्टाइल को ये बदल देगा। हर दौर में लोगों को यही चीज इस्तकामत से पीछे करती है कि नहीं, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया तो फिर हम दुनिया में पनप नहीं सकेंगे, फिर हम इन नहीं रहेंगे। I-29, ए मेरी कौम के लोगों, आज तो बात चाहत तुम्हारी है कि इस जमीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा। फिरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बताता हूँ। क्या पता चला, जिसको खुद नहीं पता वो दूसरों को भी तो वही बताएगा। तो ये देख लिया करे कि जो बात बता रहा है उसका अपना इल्म क्या है। इस मोमिन ने कहा है, मेरी कौम के लोगों, मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर भी वैसा ही रोजे बद न आए जो दूसरी और उम्मतों पर आया, जैसे उम्मत ए नूह, आद और समूद और इनके बाद वालों का हाल हुआ। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता। I-29 से क्या पता चला कि गुमराह लोग जहालत में अपने आप को सीधी राह पर समझते हैं। 2 सेकंड बस गौर कर लीजिए इस जुमले पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद को सीधी राह पे समझ रही हूं जबकि मैं नहीं हूं इस पे। देखिए, 2 जुमले हैं आपके सामने। वमा अहदीकुम इल्ला सबील अर-रशाद, आपकी मेरी जिंदगी में ये दोनों रास्ते चलते हैं। सूरत अल आराफ में आप पीछे देख चुके, सबील अल रशाद और सबील अल गई, वहां रुश्द था, यहाँ रशाद है। तो आप इस मैप को देखिए, अल्लाह का सीधा रास्ता होता है, इसके सामने सीधा खत खींचे तो ये है सबील अल जन्ना। जब आप सबील अल जन्ना पे चलना चाहते हैं ना, तो साइड पे आपको 2 रोड्स दिख रही है, ये शैतान के रास्ते हैं, ये है वो रास्ते, वो टेम्पटेशन, ये वसवसे, ये अंदेशे जो इस्तकामत पे नहीं आने देते। तो सबीलुल रुश्द और सबीलुल गई 2 मुख्तलिफ चैनल क्रिस क्रॉस होते साथ साथ चलते हैं। बैड एंड गुड इस दुनिया में साथ साथ चलता है। आपको मुझे खुद समझ इख्तियार करनी है कि मेरे हक में क्या बात बेहतर है और क्या नहीं है। और आप देखिए कि मोमिन आले फिरौन से था, लेकिन अल्लाह ने उसको कितनी बड़ी बात सिखा दी, जरा उसके जुमले सुनते चाहिए। I-32, ए मेरी कौम, मुझे तुम पर क्यामत के दिन का डर भी है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसका कोई हादी नहीं, और इससे पहले तुम्हारे पास हजरत यूसुफ दलीलें लेकर आए, फिर भी तुम इनकी लाई हुई दलील में शक को शुबाई करते रहे, यहां तक कि जब इनकी वफात हो गई तो कहने लगे, इनके बाद तो अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं। इसी तरह अल्लाह गुमराह करता है हर उस शख्स को जो हद से भर जाने वाला शक को शुबा करने वाला हो, जो बगैर किसी सनद के जो इनके पास आई हो। अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक तो ये बहुत बड़ी बेजारी की चीज है। अल्लाह ताला इसी तरह हर मगरूर सरकश के दिल पर मुहर कर देता है। यह है जी अल-क़ल्बुल मतबू अलैहि, I-35 में क्या होता है लिखिए जरा। अल्लाह किसके दिल पे मुहर लगाता है? मुतकब्बिर के और सरकश के। और तकब्बुर का टॉपिक आप डिटेल से पीछे सुनाए हैं 2 दिन पहले। खुद को बड़ा समझना, सरकशी, ना मैं नहीं मानती, मैं बड़ी, अल्लाह को कम छोटा। फिर दलील के बगैर चीजों को अपनाने पे अल्लाह की रहमत से महरूमी होने लगती है। फिर इंसान गुमराहियों में मुब्तला हो जाते हैं, और ऐसे शख्स का नाम मुतकब्बिर, जब्बार और सरकश हो जाता है। अल्लाह आपको मुझे इससे बचा ले। I-36, फिरौन ने कहा है, हामन मेरे लिए एक बालाखाना बना, शायद कि मैं इन दरवाजों तक पहुंच जाऊं जो आसमान के दरवाजे हैं, और मूसा के माबूद को झांक लूं, और बेशक मैं समझता हूं कि वो झूठा है। देखिए कौन सा ताना और इल्जाम है जो मूसा को नहीं दिया जा रहा, लेकिन इस्तकामत का पहाड़ है। फिरौन के दरबार में जमे रहे, आज हम अपने जैसे अपने ही रिश्तेदारों के आगे हार जाते हैं। इस्तकामत मांगी। और हदीस में आता है, जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ी अल्लाह ताला सबसे बड़ा जिहाद है। तो मूसा इसकी अमली तस्वीर है इस वक्त हमारे सामने, और मैं समझता हूं कि वो झूठा है। इसी तरह फिरौन की बदकिरदारियां इसे भली दिखाई गईं और आहे राह से रोक लिया गया, और फिरौन की हर हीला साजी तबाही में ही रही। और इस ईमानदार शख्स ने कहा है, मेरी कौम के लोगों, तुम सब मेरी पैरवी करो, मैंने एक राह की तरफ तुम्हारी राह बरी करूंगा। क्या पता चला आयत 38 में कि नेक और मुखलिस लोग नेकी की तरफ रहनुमाई करते ही रहते हैं, चाहे लोग उनकी बात ना माने। और जुमले सुनिए उसके, ये खूबसूरत स्पीच उसने कौन सा सबक पढ़ के की थी। ये ईमान का सबक होता है। ये इस्तकामत खुद ही आने लगती है जब ईमान असली हो। नकली ईमान से निकालकर असली ईमान भर लीजिए, फिर देखिए आप कितने ताकतवर होते हैं। अब देखिए कि एक शेर सर्कस में खेलता है और एक जंगल का शेर है। पहले को लोग पैसे देकर देखते हैं, और जंगल के शेर की आवाज सुन के जान निकल जाती है। इसी तरह जो सच्चा मोमिन होता है ना, वो जंगल का शेर होता है। मोहब्बत भी लोग करते हैं और उसे डरते भी हैं, उसका रोब भी होता है। और जो मुसलमान गैरों के इशारों पे नाचने लगे, वो सर्कस का शेर होता है। आज भी देख लीजिए मुसलमान की क्या कैफियत है, हर एक को पता है। अल्लाह हमें इस्तकामत दे दे। तिगनी का नाच नचा रहा है आज हमें कुफर और शिर्क और मुआशरा। और अब आगे उसका आखरत की तरफ माइल करने वाला जुमला, ए मेरी कौम, ये हयात दुनिया मताए फानी है, यकीन मानो के करार और हमेशगी का घर तो आखरत की है। जिसने गुनाह किया है इसे तो बराबर बराबर ही का बदला है, और जिसने नेकी की ख्वाब वो मर्द हो या औरत और वो ईमानदार हो, तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और वहां बेशुमार रोजियां पाएंगे। अल्लाह जन्नत से कम किसी चीज पे हमें राजी ना करना। ए मेरी कौम, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूं और तुम मुझे दोजख की तरफ बुला रहे हो। कितना लाड होता है बंदा मोमिन का अपने दोस्तों और अपने प्यारों से। मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूं, तुम्हारे ही जाएगा फायदा, मुझे क्या मिलेगा। मैं किसी और को बना लूंगी दोस्त, मैं किसी और को औलाद मिलूंगी, और जन्नत में सब मिल जाएगा। अगर बच्चे अल्लाह ना करे पीछे रह गए, तो अल्लाह वहां बच्चे भी दे देगा, शोहर भी दे देगा, बीवियां भी मिल जाएंगी। तो अच्छा है कि दुनिया के साथ जन्नत तक के साथ बन जाए। तुम मुझे दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफर करूं और इसके साथ शिर्क करूं, जिसका मुझे कोई इल्म ही नहीं, और मैं तुम्हें गाले बख्शने वाले माबूद की तरफ राह दिखा रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना कॉन्फिडेंस है इसको अपने ऊपर। और ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जब तक दाइये दीन को खुद अपनी दावत पे यकीन ना हो कि ये सच्ची है, वो दूसरे को कभी नहीं बुलाएगा। ढिलमिल यकीन वाले तो दूसरों के भी पांव खींच लेते हैं, कहां वो दूसरों को बुलाएंगे। अल्लाह हमें ये यकीन दे दे। ये यकीनी अमर है कि तुम मुझे जिस चीज की तरफ बुला रहे हो, वो ना तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है और ना आखरत में। और ये भी यकीनी बात है क्या कि तुम मुझे, ये भी बात यकीनी है कि हम सब का लौटना आखिर की तरफ है। आपको लग रहा है हम सब का लौटना अल्लाह ताला की तरफ है? आपको उसका अकीदे आखिरत दिख रहा है? हाईलाइट कीजिए, ये तीन अकीदे पुख्ता कर लें, इस्तकामत खुद ही आ जाएगी। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल और ईमान बिल आखिरा। एक एक लफ्ज से ईमान झलकता हुआ दिख रहा है इस बंदे के। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे दे। और हद से गुजर जाने वाले ही यकीनन अहले दोजख हैं, बस आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। इसको हाईलाइट करें, फसतस्कुरु नमा अकुलु लकुम। ये हर दर्दमंद शख्स कहता है, एक वक्त आएगा तुम मुझे याद करोगे। शायद कभी किसी माँ या बाप ने भी दुखी दिल से ये जुमला बोला और आज आपको रोना आता उनके वो जुमले याद करके। वफव्विज़ अम्री इलल्लाह, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ये है इन लजीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू। ये क्यों नीचे थड़कते, हम क्यों थड़क जाते हैं? ईमान कमजोर है, बुनियादें कच्ची हैं, और दुनिया की मोहब्बत अभी नहीं गई दिल से। करें तो क्या करें, खुरच कर फेंक दें। यकीनन अल्लाह ताला बंदों का निगरान है। ये थी मर्द मोमिन की लर्जा देने वाली तंबीह और स्पीच। कोई चीज इसके रस्ते में रुकावट नहीं बनी, ना फिरौन से डरा, ना दुनिया के फायदों से डरा, ना जान के डर से घबराया। کیونکہ آخرت کے عذاب یاد آ رہے تھے تو دنیا کی پکڑ کا کیا غم ہے. وہاں جب نظریں لگ جاتی ہیں تو جہاں والے چھوٹے پتلے پتلیاں لگتے ہیں. یہ دنیا آپ کو بڑی لگ رہی ہے نا آپ کے, ان کو پتلیاں کہا گئے, کٹ پتلیاں, کبھی دیکھا ہو تماشا, اوپر بیٹھے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں ڈنڈیاں اور لگتا ہے کہ پتلیاں ہل رہی ہیں, آپ پر میں کٹ پتلیاں. ہمارے ارد گرد جن کو بہت بڑا سمجھ کے استقامت سے ہٹتے ہیں نا, کٹ پتلیاں ہیں. ڈانٹنے کے لیے بھی کچھ ہی واسطے بولے گا نا تو اللہ اوپر ہی زبان روک لے گا, تو آگ نیچے نہیں جائے گی. ہر ممکن کوشش کی اس شخص نے اپنی جواب دے کے, حضرت یوسف کی مثال تک دے دی کہ وہ بھی تو اپنی اصلاح کی کوششیں کر کے چلے, تمہاری اصلاح کی کوششیں کر کے چلے گئے, تم تو ان کی نہ مانے, شک اور شبوں میں رہے, تم آج میری تو مان جاؤ. اور اب دیکھیں کہ فرعون کیسے حق سے ہٹانے کے لیے سازشیں کرتا رہا. حامان کو بلایا, اینٹیں تیار کرو, محل بناؤ, میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں, لیکن مرد مومن ذرا بھی نہیں پیچھے ہوا, نہ موسیٰ نہ فرعون, نہ موسیٰ نہ مرد مومن. اور یہ رقت امیز واز آپ دل پر لکھیے, یہ اگر آپ اپنے لفظوں میں اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنوں کو دیں نا, تو آپ کی آواز کی محبت اور آپ کے پیار کو محسوس کر کے اللہ ان کے دل کھولے گا. یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے جہاد کرو, زبان سے کرو. جارحانہ رویوں کے خلاف بندہ مومن کا جہاد ہوتا ہے. مدو بدو نہیں بنتا, مٹی کا مادو نہیں ہوتا مومن. چاروں تو برائیاں دیکھ کے ایک ایک کر کے قبول کرتا جا, ایسا نہیں ہوتا. گھر میں خرابیاں نہیں آنے دیتا, ریئیکشن کو ظاہر کرتا ہے, اپنا حق لیتا ہے, جہاں تک آواز جا سکے آواز کھڑی کرتا ہے, کیونکہ افوز امری اللہ کا یقین ہوتا ہے. اب آگے آیت 45 سے 46 میں ایک تو عذاب قبر کی طرف اشارے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے کہ قبر کا عذاب ہے, اور خاص طور پہ سپیسیفک ہے فرعون کے لیے عذاب قبر کی نوید. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا. ہائی لائٹ کریں, مدعی لاکھ برا چاہے مگر کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا. فرعون نہیں مار سکا اتنی باتیں کرنے والے کو, آج آپ کیوں ڈرتے ہیں اتنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے؟ کس سے محفوظ کر دیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی. اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. یہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر روز ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اور فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو, تو کیا پتا چلا آج بھی فرعون کے اوپر یہ عذاب ہے. کب تک سے دیکھیے, کب سے چلا آج تک, تو آج بھی مان لیجئے کہ عذاب قبر حق ہے. ترمذی کی روایت, انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او خفرۃ من خفر النار او خفرۃ من خفر النار. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا. چند لمحے اپنی قبر کو سوچئے کیا بنے گا, اور اس کے بعد تو پھر اسے بھی اگلی حقیقت, قیامت کی باتیں. اہل جہنم کی فریادیں سنیے گا آیت 47 سے 52 میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے, ہم تو تمہارے پیروکار تھے, یعنی وی فالو یو, ہم تو آپ کے فالوورز تھے, سبسکرائبرز تھے آپ کے, تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے جواب دیں گے, وہ بڑے لوگ جواب دیں گے, ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں, یعنی تمہیں کیسے ہٹائیں, ہم تو خود اندر ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. کسی کے پیچھے چلتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچئے کہ چل کس کے پیچھے رہی ہوں. اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغاؤں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی طرح تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے, تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن کر دے, ایک دن کے لیے تو ہمیں ذرا جہنم کے اوون سے نکال دیں. وہ جواب دیں گے, کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو, اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے. صرف ترجمہ ہی کافی ہے دل کو ہلانے کے لیے. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے. تتنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا. دنیا میں خوشخبریاں اللہ دیتا ہے, آخرت تو بعد کی بات ہے. اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے, جس نے ظالموں کو ان کی کوئی عذر ظالموں کا کوئی عذر اور معذرت ان کو کوئی نفع نہ دے گا, इनके लिए लानत ही होगी और इनके लिए बुरा घर होगा, यानी जिन्होंने जिंदगी का मौका जाया कर दिया अब इनके लिए कुछ बाकी नहीं। आखो फुगां हो, पुकारें चीखें रोएं नहीं, आज मदद सिर्फ हक वालों की है, क्योंकि जो इस्तकामत के दर्जे पे मरते दम तक जमे रहे, अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को और हर दौर के अंबिया और उनके साथ वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के क्यामत तक आने वाले वो लोग जो इस्तकामत के दर्जे पर फितनों के दौर में भी जमे रहे, वो सब इसमें आएंगे। अल्लाह हमें भी इसी में जमा जगह कर दे दे। आयत 53 से 56 बनी इसराइल का जिक्र और पैगम्बरों को सब्र की दावत भी है इसमें, और आगे जाकर देखेंगे कि हक के दुश्मनों के लिए वईदें भी हैं। वलकद आतैना मूसा अल-हुदा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत नामा अता फरमाया और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया कि वो हिदायत और नसीहत ही अकलमंदों के लिए। पर से नबी आप सबर कीजिए कि अल्लाह का वादा बिला शुबा सच्चा ही है, और आप अपनी लफ्जशों की माफी मांगते रहिए और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहिए। देखिए वलकद आतैना मूसा अल-हुदा, हिदायत की बात आ गई। क्या पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम को किताब हिदायत मिली और किताब के वारिसों की जिम्मेदारियां दी गई। आज आपको मुझे भी किताब का वारिस बनाया गया, पीछे सूरत फातिर में हम पढ़कर आए हैं। तो क्या है, तौरात में अहले अक्लो खिर्द के लिए सबक था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का तोहफा हिदायत मिला, आज मुझे आपको इसको थामना। कुरान हर कदम पर मुसलमानों की रहनुमाई करता है, शर्त यह है कि आप इसको समझ कर पढ़ें। मुसलमानों की जिम्मेदारी कुरान का पैगाम पहुंचाकर लोगों की हिदायत का फरीजा अंजाम देना है। अल्लाह ताला मुझे आपको चुन ले, और लिख लीजिए दूसरों की हिदायत के लिए अल्लाह उन्हीं को चुनता है जो इस्तकामत के दर्जे पे जमे रहते हैं, सीखते सीखते एक दिन आता है कि वो सिखाने वाले भी बन जाते हैं। और खुदम व जिक्रा अली उलिल अलबाब आयत 53 में देखिए, आसमानी सहीफों से हिदायत और नसीहत अक्ल सलीम वाले ही उठाते हैं, जिनकी अक्लें बिगड़ गई उनको हिदायत नहीं मिलेगी। किताब की हिदायत से इंसान गलतियों और खराबियों से बच निकलता, और आसमानी सहीफे हादी हैं, इनसे उलिल अलबाब ही नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह हमें अक्ल वाला बना दे। आयत 56, जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के न होने के आयात इलाही में झगड़े करते हैं और इनके दिलों में सिवाय निरी बड़ाई के और कुछ नहीं, वो इस तक पहुंचने वाले ही नहीं, सो तू अल्लाह की पना मांगता रहे, बेशक वो पूरा सच सुनने वाला, सो तू अल्लाह की पना मांगता रहे, बेशक वो पूरा सुनने वाला और सब कुछ सबसे ज्यादा देखने वाला है। यानी अल्लाह के दुश्मनों का अंजाम तो जो होगा, अब अल्लाह ताला के ऊपर नजरें लगा लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है कि वो तुम्हें भी थाम लेगा। फिर आयत 57 से 64 में कायनात पे गौर व फिक्र भी है, और साथ ही साथ आपको बीच में खास तौर पे आयत 59-58 में दिखेगा कि अल्लाह के बागी और अल्लाह के वफादार बराबर नहीं होते। लखल्कु समावाति वल अर्द अकबरु मिन खल्किन नास, आसमानों जमीन की पैदाइश यकीनन अल्लाह की पैदाइश से, सॉरी आसमानों की जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये और बात है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं। अंदर बिना बराबर नहीं, ना वो लोग जो ईमान लाए और भले काम किए बदकारों के बराबर हैं। तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल कर रहे हो। क़यामत बिल यकीन और बिला शुबा आने वाली है, लेकिन ये और बात है कि बहुत से लोग ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। देखिए कैसे इस बारे में दुआओं का टॉपिक साथ साथ चल रहा है। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं वो भी जलील होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम इसमें आराम हासिल करो, और दिन को देखने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजलो करम करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। यही अल्लाह है, तुम सब का रब, हर चीज का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर कहां तुम फिरे जाते हो। इस तरह वो लोग भी फेरे जाते हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। कौन अल्लाह? अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बना दिया, और तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत खूब सूरतें बनाई, और तुम्हें उम्दा चीजें खाने को दी, और तुम्हें उम्दा उम्दा चीजें खाने को अता फरमाए, यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, बस बहुत बरकतों वाला अल्लाह है, सारे जहान की परवरिश करने वाला, ये है रब्बुन अल्लाह। जब इस बात का यकीन आ जाता है ना, तो फिर इंसान कभी अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। आप देखिए कि क्या तौहीद पुख्ता हुई और बंदा खड़ा हो गया। जब अल्लाह से पुकारते हैं ना, तो फिर अल्लाह ही की मानते हैं, लेकिन जब अल्लाह की तरफ तवज्जो ना हो तो बात वही है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, रख दिखलाएं किसे, राह रहवे मंजिल ही नहीं। आप हिदायत लेना ही नहीं चाहते तो अल्लाह आपको क्यों दे, आप जन्नत मांगना ही नहीं चाहते तो अल्लाह आपको जन्नत क्यों दे। तो लिहाजा दुआ उसी से मांगिए जो मुहसिन हकीकी हो। और आप देखिए अपनी नायतों में अल्लाह के कितने एहसानात को देखा, रात का सुकून, दिन का आराम, दिन की रोशनी, दिन के काम, जमीन को जाय सुकून बनाना, घर बार, फिर आसमान को छत बना दिया जिसने तुम्हें खुद बेहतरीन साख में पैदा किया, तुम्हें पाकीजा रिस्क दिया, खालिक मालिक राजिक वो है, तो तुम उसको छोड़कर दूसरों को पुकारते हो तो गलत है। आगे आए 65 से 68 में, एक तो बातिल के साथ मुसालहत ना होने की बात है, यानी डोंट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि इस्तकामत का दर्जा ये होगा, और साथ ही साथ अल्लाह के ताबे फरमान होने की दावत है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्लाहुवा फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन, वो जिंदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम खालिस इसी की इबादत करते हो, करते हुए इसे पुकारो। तमाम खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आप कह दीजिए कि मुझे इनकी इबादत से रोक दिया गया जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, सोचिएगा इसको, इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें पहुंच चुकी, मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं तमाम जहानों के रब का ताबे फरमान हो जाऊं। वो वही है जिसने तुम्हें मट्टी से, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से पैदा किया, इंसान की औकात दिखाई जा रही है, फिर वो तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी कुव्वत को पहुंच जाओ, फिर बूढ़े हो जाओ, तुम में से बाज इससे पहले ही फौत हो जाते हैं, वो तुम्हें छोड़ देता है ताकि तुम मुद्दत मुअय्यन तक पहुंच जाओ और ताकि तुम सोच समझ रखो। वही है जो जिंदा करता और मारता है, फिर वो जब किसी काम का करना मुकर्रर करता है तो इसे सिर्फ कह देता है, तो सिर्फ इसे कह देता है कौन फयाकून, हो जा, बस वो हो जाता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह आप हमारी इस्तकामत पे भी कौन कह दीजिए, और कदम कदम पे जब हम बातिल के साथ समझौते करते हैं, अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले, और अल्लाह ताला हमें हमारी औकात हमेशा याद रखने वाला बनाए। जब भी इस्तकामत के रास्ते से हटने लगे, इन आयात को याद कर लीजिए कि मेरा मुकाम क्या है, मेरी औकात क्या है। अब आगे 69 से 76 तक जहन्नुम की झलकियां भी हैं और छुटलाने वालों का बुरा अंजाम भी है। अलम तरल्लसीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह, क्या तूने उनको नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, वो कहां फेर दिए जाते हैं, यानी इनकी मत क्यों मारी जाती है, इनको समझ क्यों नहीं आती। जिन लोगों ने किताब को झुटलाया और इसे भी जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, बस इन्हें अभी अभी हकीकत हाल मालूम हो जाएगी, थमकी है बुरे इंजाम की पकड़। क्या होगा, इन आयतों को जरा सा तवज्जो दीजिएगा, जबकि इनकी गर्दनों में तौक होंगे और जंजीरें होंगी, खसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में, और फिर जहन्नुम की आग में जलाए जाएंगे। अल्लाह वजीरना मिनन्नार, अल्लाह किसी साथी को जो सुन रहा है उसको आग में न डालना, अल्लाह सबको बचा के रखना। फिर इनसे पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम शरीक करते थे वो कहाँ हैं, जो अल्लाह के सिवा थे, तो वो कहेंगे वो तो हमसे बहक गए, बल्कि हम तो इससे पहले किसी को पुकारते भी ना थे, यानी पहले सच मुंह से निकला, आप झूठ बोलना चाहेंगे। अल्लाह ताला काफिरों को इसी तरह गुमराह करता है, ये बदला है इस चीज का जो तुम जमीन में नाहक फूले न समाते थे और बेजा इतराते फिरते थे, अब आओ जहन्नुम में हमेशा रहने के लिए, इसके दरवाजों में दाखिल हो जाओ, क्या ही बुरी जगह है तकब्बुर करने वालों की। तो इतने बुरे इंजाम से अल्लाह ताला बचाने के लिए दुनिया में इतनी मोहब्बत से बात करते हैं। अब आगे सूरत के आखिर की तरफ हम चल पड़े, आयत 77 से 78, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दी जा रही हैं, और साथ ही ये खबर है कि मौजज़ा तो सिर्फ अल्लाह ताला ही अता फरमाता है, क्योंकि मक्का वाले मौजज़े तलब करते थे, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं, फस्बिर इन्ना वादल्लाहि हक, बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा कतन सच्चा है। इन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं इनमें से कुछ हम आपको दिखाएं, या इससे पहले हम आपको वफात दे दें, इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है। यकीनन हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके, जिनमें से बास के वाकयात हम आपको बयान कर चुके हैं, और इनमें से बास के किस्से तो हमने आपको बयान ही नहीं किए। और किसी रसूल का ये मकदूर यानी उसकी ताकत न थी कि कोई मौजज़ा अल्लाह की इजाजत के बगैर ला सके। फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा तो हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और इससे अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही हिदायत दे दे अपनी पकड़ से पहले। अब आयत 79 से 81, अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र है और उसने चौपाए अल्लाह की नेमत के तौर पे पेश किए जा रहे हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुम अल-अनाम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून। अल्लाह वो है जो तुम्हारे लिए चौपाए पैदा करता है, यानी वो हस्ती जिसने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, जिनमें से बास पर तुम सवार होते हो और बास को तुम खाते हो, और वो भी तुम्हारे लिए इसमें और भी तुम्हारे लिए इनमें बहुत सारे नफे हैं, ताकि अपने सीनों में छुपी हुई हाजतों को इन्हीं पर सवारी करके तुम हासिल करो, और इन चौपायों पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता जा रहा है, बस तुम अल्लाह की किन किन निशानियों का मुनकर बनते रहोगे। सवाल करते हैं खुद से, दिन रात हमें अल्लाह की निशानियां दिखती हैं, इन चीजों के बीच में रहते चलते फिरते हैं, लेकिन हम कभी गौर कम ही करते हैं कि कायनात में ये जानवर भी अल्लाह ने खड़े कर दिए और बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए। तो लिहाजा आयत 82 से 85 में मुशरिक कौमों के अंजाम से सबक हासिल करने की दावत भी है, और मौत के वक्त तौबा का फायदा नहीं होगा, तौबा आज करनी है, टुडे, अभी, नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इफ यू डिले गाइडेंस यू विल डिनाई द गाइडेंस। जितनी हिदायत को पीछे करते जाएंगे हिदायत पीछे होगी। जब दिल में तड़प आए ना उसी वक्त दुआ कर लिया करें। और हमारी एक उस्ताद कहा करती थी, जहां कुरान में कोई हुक्म आए फौरन अमल करो, उसी दिन अमल कर लो, वरना तौफीक नहीं रहेगी। दूसरी बार बंदे को ख्याल ही नहीं आता। अफलम यसीरु फिल अर्दि फयंजुरु कैफ काना अकिबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। क्या उन्होंने जमीन में चल फिर कर नहीं देखा कि अपने से पहलों का अंजाम क्या हुआ, जिनसे तादाद में कहीं ज्यादा थे, कुव्वत में सख्त यानी सुपर पावर्स थे, और जमीन में बहुत सारी यादगारें छोड़ गए यानी मेमोरियल्स थी उनकी भी चीजें कुछ, इनके किए कामों ने इन्हें कुछ फायदा ना दिया। क्या शहर है दुनिया का, बड़ी इमारतें बना लो, सबसे बड़ी किताबों में छप जाओ, क्या फायदा जब अल्लाह की पकड़ आ गई। बस जब कभी इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए तो ये अपने पास के इल्म पर इतराने लगे। हाईलाइट करें, आज का इंसान भी अपने दुनियावी इल्म पे इतराता है। कोई हमसा हो तो सामने आए, टाइटैनिक भी डूब गया, दावे करने वाले भी चले गए, बिलाखिर जिस चीज को मजाक में उड़ा रहे थे वही इन पर उल्टी पड़ी। बस हमारा साहब देखते ही कहने लगे कि अल्लाह वाहिद पर हम ईमान लाए, अब क्या फायदा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह कहने का वक्त तो दुनिया थी, और जिनको हम इसका शरीक बना रहे थे हमने इन सब से इनकार किया, लेकिन हमारे अजाब को देख लेने के बाद इनके ईमान ने इन्हें नफा न दिया। अल्लाह ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है, जिसके बंदों में बराबर चला रहा है, और इस जगह काफिर खराब और खस्ता हुए। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या पैगाम देकर ये सूरत गई। क्या आज इस लाख का वक्त है, जब गुजर गया तो फिर अजाबों से नहीं होगा, तो वो दुआ कर लिए कि अल्लाह हमें किताब से हिदायत दे दे इससे पहले कि अजाब से हमें हिदायत मिले, क्योंकि उस वक्त हिदायत या उस वक्त फिर इंसान को तौबा की मोहलत नहीं मिलती। आखिरी सूरत जो इस पारे के अंदर हम इसका कुछ हिस्सा पढ़ने वाले हैं, सूरत अल-फुसिलत है। इसको हामीम सजदा भी कहते हैं, क्योंकि कुरान में दो सूरतें हैं सजदा वाली, तो ये सूरत हामीम से शुरू होती है। अल्लाह ही की तरफ दावत देने का बयान है इस सूरत में। तौहीद अमली का कौन सा नमूना है इसमें? दावत इल्लाह, दावत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी की दी जाए। लोगों को इधर उधर की चीजों और बहसों में मत उलझाओ, सिर्फ एक पैगाम दे दो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, और उसकी तरफ ही बंदों को बुलाओ। 41 नंबर की सूरत है, 46 आयतें हैं इसकी जो इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आयतों का तजिया लिख लेते हैं। 1 से 8 कुरान की अजमत और दावत, 9 से 12 आसमान और जमीन की तखलीक पे गौर व फिक्र, 13 टू 18 सरकश कौमों का दुनिया में इंजाम, 19 टू 29 सरकश कौमों का आखरत में इंजाम, 30 टू 36 अल्लाह का पसंदीदा किरदार अजीमत के दर्जे पर, और आय 37 से 39 अल्लाह की निशानियां, 40 टू 45 अजमत कुरान, 46 टू 48 रोजे क़ियामत आमाल का नतीजा, 49 से 41 इंसान की नाशुक्री, और 52 से 54 अजमत कुरान। अल्लाह हमें कुरान की अजमत के लिए सूरत को पढ़ने वाला बना दे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम हरूफ मुकत्तात है। तंजीलो मिनर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की अजमत और मुशरिकीन मक्का की हट धर्मी का तस्करा है इन आयात में। हामीम ये उतारी हुई है बड़े मेहरबान बड़े रहम वाले की तरफ से। ऐसी किताब जिसकी आयतों की वाज़े तफसील कर दी गई इस हाल में कि कुरान अरबी जुबान में है उस कौम के लिए जो जानती है। खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला है, फिर भी इनकी अक्सरियत ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं। हाईलाइट कीजिए, सुनते ही नहीं, क्योंकि सुनने के बाद गिल्ट होता है, कॉन्शियस हो जाता है इंसान। तो आज भी बहुत सारे लोग यही स्केप रूट लेते हैं कि ना सुनो ना अमल करो, ना लिखो ना पढ़ो, ना जौक व शौक रखो, और बाद में कल जाके कहना अल्लाह जाहिल रहकर आए हैं। तो याद रखिए, मगदूब के लिए भी पकड़ है और दालीन के लिए भी पकड़ है। अभी तक तो आपको माशाल्लाह 24 पारों में नहीं पता चला कि जो ना पढ़े और भोला ही बना रहे और फिर भूला ही बना रहे उसकी कोई पकड़ नहीं। तो आज इस चीज से भी लोगों को निकालने की जरूरत है कि सीखो तो सही, पढ़ो तो सही, फिर अमल की तौफीक भी इंशाल्लाह मिल जाएगी अल्लाह की तौफीक से। और उन्होंने कहा कि तू जिस चीज की तरफ हमें बुला रहा है, हमारे दिल तो इससे पर्दे में है और हमारे कानों में गिरानी है यानी बोझ, और हमने और तुझ में एक हिजाब है यानी तेरी मेरी वेवलेंथ ही नहीं मिलती, आपकी बातें ही नहीं हमें समझ आती, पता नहीं किस दौर की बातें करते हैं। अच्छा तो अब अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। दिल के पर्दे की बात पढ़ी आपने? आज भी लोग कहते हैं जी पर्दा तो दिल का होता है, तो ये तो मतबू अलही है। आप कह दीजिए कि मैं तुम ही जैसा इंसान हूँ, मुझ पर वही नाजिल की जाती है कि तुम सब का माबूद एक अल्लाह ही है, बस तुम इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और इससे गुनाहों की माफी चाहो। और इन मुशरिकों के लिए बहुत बड़ी खराबी है जो जकात नहीं देते और आखिरत के भी मुनकर रहते हैं। ये कौन से मुशरिक है? शिर्क करने वाले? ना ना, जकात ना देने वाले। चेक कर लीजिए अगर अभी तक आपने भी जकात नहीं दी तो, रमजान में ज्यादा अजर है लेकिन जब भी देंगे, लेकिन अपने माल की जकात का मुकल्लफ इंसान खुद है। बेशक जो लोग ईमान लाए और भले काम करें इनके लिए न खत्म होने वाला अजर है। जमीन और आसमान की तखलीक की बातें हैं आयत 9 से 12 में, और ये पूरा ब्रेक डाउन है इनमें कैसे दुनिया बनी, इस पे बहुत साइंटिफिक फैक्ट दिए जाते हैं जब डिटेल से हम पढ़ते हैं। अभी तो बस इतनी बात है कि कुरान हकीम की दावत का खुलासा किला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस ये दावत मान जाओ, आहिस्ता आहिस्ता बाकी काम तुम्हें अल्लाह ताला दे देगा, तौफीक देगा। तो आयत 9 से 12 में जमीन और आसमान की तखलीक का तस्करा। कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ध फी यौमैन। बड़ी इंटरेस्टिंग आया आता है वैसे ये साइंस के नाते से। आप कह दीजिए कि क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो कि तुम इसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने दो दिन में जमीन पैदा की? सारे जहानों का परवरदिगार वही है, और इसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दी और इसमें बरकतें रख दी, और इसमें रहने वालों की गजा की भी तजवीज इसी में कर दी सिर्फ चार दिन में, जरूरतमंदों के लिए यकसां तौर पर। और फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो धुआं सा था, पस इसे और जमीन से फरमाया यानी आसमान और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से। दोनों ने अर्ज किया हम बखुशी हाजिर हैं यानी तौहन व करहन, आपको भी मुझे यही कहा गया खुशी से अल्लाह की तरफ आ जाओ, नहीं तो ना खुशी से तो बुलाए जाओगे या आओगे या हथकड़ियां डालकर बुलाए जाओगे। बस दो दिन में सात आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से जीनत दी सितारे, और निगेबानी की ये तदबीर अल्लाह गालिब व दाना की है। क्या पता चला कि इस कायनात को बनाने में अल्लाह ने बहुत खूबसूरतियां रखी, कायनात को अच्छा रखा, इसके बावजूद झुठलाने वालों ने झुठलाया। तो आए 13 से 16 कौमे आद का तकब्बुर है और आगे चलते जाएंगे तो कुरान की दावत झुठलाने वालों के बुरे अंजाम है। अल्लाह न करे आज के दौर में मैं आप भी इसको झुठलाने वालों में शामिल हो जाए। फइन आरदू फकुल अंजरतुकुम साइकत मिसल साइकत आद व समूद। अब अगर ये मुंह फेर दें यानी रूगरदानी करें तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस कड़क यानी अजाब आसमानी से डराता हूँ जो मिसल आदियों और समूदियों की कड़क के होगी। इनके पास इनके आगे पीछे से पैगंबर आए कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्तों को भेजता, हम तो तुम्हारी रिसालत के बिल्कुल मुनकर हैं। नाउसुबिल्लाह, कैसी डिटाई थी। अब कौमे आत ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, मन अशद्दु मिन्ना, हाईलाइट कीजिएगा इसको, हमसे जोरावर कौन है। हर दौर के सुपर पावर ने यही कहा, चाहे वो फिरौन था या नमरूद। क्या इन्हें ये नजर न आया कि जिसने इन्हें पैदा किया वो इनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है, वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। बिल आखिर हमने इन पर एक तुंदो तेज आंधी मनहूस दिनों में भेज दी कि इन्हें दुनियावी जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दे, और यकीन मानो कि आखिरत का अजाब इससे बहुत ज्यादा रुसवाई वाला है और वो मदद नहीं किए जाएंगे। क्या कुरान का तर्जमा ही काफी नहीं है इस बात का यकीन दिलाने में कि क़यामत आएगी और जो दुनिया में मस्तियां कर रहे हैं कल उनकी सारी मस्तियां निकल जाएंगी। बड़ी बड़ी बड़के मार के चले गए, बड़े बड़े स्लोगन थे, बड़े बड़े दावे थे। अब आगे कौमे समूद का अंधापन दिखाया जा रहा है आयत 19-17-19 में। वह अम्मत समूद फहदई ना हूं फस्तहबुल रहे कौमे समूद, सो हमने इनकी बिराहबरी की, फिर उन्होंने भी हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी, जिस बिना पर इन्हें जिल्लत के अजाब की कड़क ने इनके करतूतों के बायस पकड़ लिया। हाँ, ईमानदारों और नेक लोगों को हमने बाल बाल बचा लिया। दुआ करें अल्लाह में बाल बाल बचा दे। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ लाए जाएंगे और इन सब को जमा कर दिया जाएगा। आयत 17 बहुत रिक्कतुल कल्बी वाली आयत है। फहदैनाहुम फस्तहब्बुल आमाल अल-खुदा। अल्लाह कभी कभी सारी हुज्जतें पूरी कर देता है हिदायत पे लाने की, लेकिन लोग नहीं आते। ऐसे लोगों की बात है, हिदायत के बदले में गुमराहियां कबूल करते हैं। अल्लाह में से कोई ऐसा ना हो तो क्या पता चला कि हिदायत के मुकाबले में गुमराही को तरजीह देने वाले ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद करने वाले होते हैं, और ऐसे लोग हिदायत से महरूम रह जाएंगे। शर और जुल्म हिदायत से दूरी का सबब बनता है। कुफर और गुमराही को पसंद करने वाले अंधेपन और गुमराही का शिकार होते हैं। अल्लाह बचा के रखे। आगे है जी आयत 20 से 25 में आंखों कानों और खालों की गवाहियां। आंखों कानों और खालों की गवाही मुजरिमीन के खिलाफ इनकी आंखें कान और गवाही देंगी, ये दिल पे लिखने वाली आयतें हैं। रोजे क़यामत कैसे जहन्नम की आग के पास मुजरिमों को इकट्ठा किया जाएगा और अपने जुर्मों की शिद्दत की वजह से उनकी दर्जाबंदी होगी, क्लासिफाई किया जाएगा और उनके जुर्म साबित करने के लिए गवाह होंगे। और सबसे ज्यादा मुजरिमों को उस वक्त जो तकलीफ दे बात होगी कि गवाह बाहर के नहीं उनके घर के भेज दिए हैं जो लंका ढा रहे हैं। आंखें कान और खाले उनके खिलाफ गवाहियां देंगी, फिर ये शिकायत करेंगे, अजा क्या बोलेंगे, ये सब कुछ आप पढ़ने लगे हैं। जरा सी तवज्जो दीजिए, चंद मिनट अब हमारे पास, इस पे दिल के अंदर लाइए, सब काम छोड़ दीजिए जो आप बाद में कर सकते हैं, और कहिए कि अल्लामा जिरना मिनन्नार हत्ता इजा मा जाउहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। यहां तक कि जब बिल्कुल जहन्नुम के पास आ जाएंगे, इन पर इनके कान पर और इनकी आंखें और इनकी खालें इनके अमाल की गवाही देंगी। बिल्कुल जहन्नुम के दरवाजे पर खड़ा करके किया जा रहा है ये अमल। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी। वो जवाब देंगे, हमें इस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी है, इसने तुम्हें पहली बार पैदा किया और इसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे, और तुम अपनी बदामालियां इस वजह से पोशीदा रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें गवाहियां देंगी। यानी तुम अपनी बदामालियां इस वजह से पोशीदा रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगी। हाँ तुम ये समझते रहे, हाँ तुम ये समझते रहे कि तुम जो कुछ कर रहे हो इसमें से बहुत से अमल से अल्लाह बेखबर है। गुनाह हो नहीं सकता जब तक ये यकीन ना आ जाए, वरना तो अल्लाह के पता चलने के और उसके खबरदार होने का यकीन हो तो आंख गंदी चीज देख सकती है, कान गंदी बात सुन सकता है, जुबान से बुरी बात निकलती है। तुम्हारी इस बदगुमानी ने जो तुम अपने रब से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दिया और बिलाखर तुम नुकसान पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करें तो भी इनका ठिकाना जहन्नुम है, और अगर ये माफी के ख्वासगर हों तो वो माफी भी नहीं दिए जाएंगे। और हमने इनके कुछ हमनशीन दोस्त साथी मुकर्रर कर रखे थे जिन्होंने इनके अगले पिछले अमाल इनकी निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे, और इनके हक में भी अल्लाह का कौल इन उम्मतों के साथ पूरा हुआ जो इनसे पहले जिन्नों और इंसानों की गुजर चुकी हैं, यकीनन वो नुकसान पाने वाले साबित हुए। अब जरा सुनिए आगे आयतों का मजाक करने वाले कुरान से दुश्मनी और इसका अंजाम। 26 से 29। दिल पे रखने वाली आयते हैं, और काफिरों ने कहा इस कुरान की सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक्त पर बेहुदा गोई करो, क्या जब के तुम गालिब आ जाओ। बस यकीनन हम इन कुफार को सख्त अजाब का मजा चुखाएंगे और इन्हें इनके बदतरीन आमाल का बदला जरूर जरूर देंगे। अल्लाह के दुश्मनों की सजा यही दोजख की आग है जिसमें इनका हमेशगी का घर है। ये बदला है हमारी आयतों का इनकार करने का। और काफिर लोग कहेंगे हमारे रब हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक दिखा। यहाँ लज़ीना का लफ्ज अरबी में, गलत ना पढ़िए कभी, बहुत कम आता है ये लफ्ज, अमूमन लज़ीना आता है। दो गिरोह जिन्होंने हमें गुमराह किया था ताकि हम इन्हें अपने कदमों तले डाल दें, रोन दें, ठुड्डे मारे इनको, मसल दें इनको, ताकि वो जहन्नुम में सबसे नीचे अजाब में हो जाएं। कितना रंज होगा उस बंदे पे जिसकी वजह से आप जहन्नुम में आ गए। दुनिया में चार पैसे चले जाए ना किसी की वजह से तो आप उसको माफ नहीं करते। इसने मशवरा दिया तो मैंने कारोबार शुरू किया, इनके मशवरे के इन्होंने कराया रिश्ता, ये कहते हैं लोग, इसलिए घर टूट गया। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला दुनिया में बुरी दोस्तियों को अच्छी दोस्तियों में बदलने की दावत देता है, और बुरे दोस्तों में सबसे बुरा दोस्त शैतान जो हर बंदे के साथ लगा हुआ है, हर वक्त गलत आइडिया सुझाता है, गलत बातें गलत बातें। और याद रखिए कुरान की तबलीग से रोकते थे, मक्का वालों को पता था ये कुरान दिलों पर असर करता है, इस्तकामत से हटाते थे। आज जरा सोचिए वो कामयाब हुए क्या मुसलमान, क्या आज हम सुनाने में कामयाब है या वो ना सुनाने में। घर घर नजर बिन हारिस के चीले पहुंच गए, हमारे बच्चों हमारी मर्दों हमारी औरतों को इतना मसरूफ कर दिया फिक्शन में कि अब ये कुरान सुनना सुनाना भी कोई एक एक्सट्रीमिज्म लगने लग गया। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमारे घर वालों को हिदायत दे, हमारे घरों से कुरान की आवाजें उठें। अब और आगे 30 से 32 आपकी थीम आयतें जो आप सुन चुके हैं, कुल तालीमात दीनी का खुलासा और इतर, यानी पूरा दीन निचोड़ेंगे ना ऐसे नुचड़ के पूरे दीन का खुलासा, तो उसमें जो इतर निकलेगा उसका नाम है इस्तकामत, साबित कदम रहना है। और आप देखेंगे इन आयात में पूरे दीन के कामों को एक लफ्ज इस्तकामत में समेट दिया गया। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामु ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वाकई जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर इसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम न करो बल्कि इस जन्नत की बिशारत सुन लो जिसका तुमसे वादा किया गया, यानी जिसका तुम वादा दिए गए हो। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक यानी दोस्त थे, और आखरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। ये नोट कर ले, हम दुनिया में मांगते हैं अल्लाह जन्नत में जमा करके रखता है। गफूरुर रहीम माबूद की तरफ से ये सब कुछ बतौर मेहमानी के है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपका होस्ट होगा वहां, कैसा होगा वो दिन तसव्वुर में लाए। अब सवाल ये कि इस्तकामत का दर्जा जब मिल जाए, जाहिरी तौर पे इबादत में और अमर बिल मारूफ की कोशिश और नहीं निल मुनकर से, यानी आप लिख सकते हैं चंद जुमले जिससे आपको और भी ये मौजू समझ आ जाए कि जब आप अल्लाह को रब मान लेते हैं ना तो उसके बाद जाहरी इस्तकामत क्या होती है, क्या आप अल्लाह की इबादत करें, दिल की अमादगी के साथ नमाज रोजा हज ज़कात कीजिए, इताअत कीजिए, फिर अमर बिल मारूफ करें, अल्लाह की मर्जी जारी और सारी रखने की कोशिश करें। नहीं निल मुनकर क्या है कि अपने ऊपर से नाफरमानियों को मिटाने की धुन सवार हो जाए आप पे, तन मन धन लगा दीजिए अपने अंदर से बुराइयां निकालने पे। इस्तकामत बातनी होती है एक, वो क्या है, राजी बरज़ाए रब, अल्लाह के हर फैसले पे राजी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर नेमत को अल्लाह की अता समझें और उस पर इतराएं नहीं। तीसरी बातनी इस्तकामत है मखाफतुल्लाह, हर हाल में अल्लाह से डरना। चौथी होती है तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखना और उसी से उम्मीद रखना। और पांचवी और आखिरी तफवीदुल अम्रु इलल्लाह, मेरे सारे मामले मेरे रब के सपुर्द। ये सात चीजें, आठ चीजें कर लें तो अंदर बाहर से इस्तकामत होगी और लफ्ज इस्तकामत में क्यामत मुजमिरा। एक बड़ा मारूफ जुमला है सूफिया कराम के बीच में, कहते हैं कि अल इस्तकामत खैरु मिन अल्फी करामा, इस्तकामत हजार करामतों से बेहतर है। जी ये भी सच है, कोई आज आपको पानी पे चल के दिखा देना तो मुमकिन है, लेकिन पांच वक्त की फर्ज नमाज मस्जिद में जाके मुस्तकिल पढ़ना और इस पे इस्तकामत रखना ये मुश्किल है। इल्ला माशाल्लाह, आज लोग नापैद होते जा रहे हैं जो इस्तकामत के दर्जे पे नेकियां करते थे। तो फरिश्तों की दोस्तियां लेनी आसान नहीं, अल्लाह हर बिगड़ी बना देगा। आप अल्लाह के ऊपर रहिए, आप अल्लाह के रस्तों में निकलिए, अल्लाह की बातें माने, अल्लाह आपकी मानेगा। आज आप अल्लाह के बन जाएं, अल्लाह तो आपका पहले से ही बनने को तैयार है। फिर वहां वो जन्नत जिसमें नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी होगी, वो मिलेगा जो तलब होगी, और इब्तदाई ज़ियाफ़त अल्लाह की मर्जी की होगी। और बुखारी मुस्लिम की वो रिवायत भी याद कर लीजिए कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए वो तैयार किया जो किसी आंख ने ना देखा ना कान ने सुना और दिल पे तो उसका ख्याल ही नहीं आया, सरप्राइज है वहां। फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, अल्लाह हमें उस जन्नत से महरूम ना करे, कोई एक ही गुनाह हमें उस जन्नत से दूर ना कर दे। कभी कभी बंदा बिल्कुल मंजिल के करीब होता है, हिम्मत हारता है, कहता नहीं मिलना, घर छोड़ो चलते हैं। घर जाकर फोन किया, कपड़े चेंज किए, रोते धोते, अब इस केक का क्या करूं, फोन किया, वो कहते हैं बिल्कुल जहां से आप पलटी है ना उससे एक मोड़ मुड़ती तो मेरा घर था। तो कहीं हमें से कोई इधर ही से ना पलट जाए। आगे आए 33 से 34 में बेहतरीन बात, दावत इल्लाह, ये है उन लोगों के दिलों की ठंडक जो अल्लाह के दीन को पहुंचाने में कोशिशें करते हैं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअ इल्लाह, और इससे ज्यादा अच्छी बात वाला और कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं यकीनन मुसलमानों में से हूं। नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। ये तोहफा मिलता है आपको, दो दुश्मन दोस्त बनने लगते हैं और कभी कभी दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं। आयत 35-36, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का नुस्खा। वमा युलक्काहा इल्लज़ीना सबरू, आप सबके लिए पैगाम है, जिनको लगता है कि मेरे दीन पे आते ही सब नाराज हो गए तो ये जुमला लिख लें अपने लिए, और ये बात इन्हें नसीब होती है जो सबर करें। डोंट बी रिएक्शनरी, जुबान मत चलाएं, हाथ पांव मत चलाएं, सबर करें, अपना किरदार खूबसूरत बनाएं। हाँ लेकिन, और इसे सिवाय बड़े नसीबे वालों के कोई पा नहीं सकता, सब्र नहीं आता नसीब के बगैर। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत ही सुनने और जानने वाला है। तो जब दीन के रास्ते में शैतानी वसवसे आए तो अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। और आगे फिर आए 37 से 39, अल्लाह की सिफात। वमिन आयातिही लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मर, और रात और दिन और सूरज चांद भी इसी की निशानियों में से हैं। तुम सूरज को सजदा ना करो ना चांद को, बल्कि सजदा इसी अल्लाह के लिए करो जिसने सबको पैदा किया है। अगर तुम्हें इसी की इबादत करनी है तो भी, फिर भी अगर ये किब्र और गरूर करें तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नजदीक हैं वो तो रात दिन उसी की तस्बीह बयान कर रहे हैं और किसी वक्त भी वो उकताते नहीं। अल्लाह हमें भी बेथके बिन थके उसकी इबादत करने वाला बना दे। और इस अल्लाह की निशानियों में ये भी है कि तू जमीन को दबी दबाई देखता है, फिर जब हम इस पर मीह बरसाते हैं तो वही तरोताजा होकर उभरने लगती है। जिसने इसे जिंदा किया वही यकीनन मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। क्या पता चला कि अल्लाह की कुदरतों पे यकीन रखो। और आयत 40 से 42 अजमत कुरान, कितना तस्करा है इस कुरान का इस सूरत में और इस पूरे पारे में। दुआ कीजिए अल्लाह इस किताब को जिंदगी भर में कभी ना छोड़ू, इस पे तौफीक दे। इन्नल लजीना युल्खिदूना फी आयातिना ला यख्फौना अलैना, बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं वो कुछ हमसे छुपे हुए नहीं। बतलाओ तो जो आंख में डाला जाए वो अच्छा है या जो अमन और अमान के साथ क़यामत के दिन आए। तो जो तुम चाहो करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बावजूद इससे कुफर किया, पहुंच गया कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, इनकार नहीं करना, वो भी हमसे पोशीदा नहीं। ये बड़ी बावक्कत किताब है, यानी इसको हल्का ना जानो। जिसके पास बातिल फटक भी नहीं सकता, न इसके आगे से न इसके पीछे से, ये है नाजिल करदा हिकमतों वाले खूबियों वाले अल्लाह की तरफ से। अल्लाह इस किताब के साथ जीना मरना बना दे। और अब पारे के एंड पे अल्लाह के नबी की दिल जोई आयत 43-46, मा युकालु लक इल्ला मा कद कील लिर्रुसुल मा युकालु लक इल्ला मा कद कील लिर्रुसुल मिन कब्लिक, आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों से भी कहा गया। यकीनन आप करब माफी वाला और दर्दनाक अज़ाब वाला। देख लीजिए अल्लाह के नबी पे प्रेशर था, 36वीं दफा आइए ये आयत तस्कीन की, तसल्ली की नबी के लिए, तभी तो आपको फिर इस्तकामत पे जमे रहने का इतना अल्लाह ने बड़ा सिला दिया। और अगर हम इसे अजमी जुबान का कुरान बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ साफ बयान क्यों नहीं की जाती या क्यों नहीं की गई। ये क्या कि अजमी किताब और आप अरबी रसूल, इस पे गौर कीजिएगा। आज हम तो अजमी हैं लेकिन किताब अरबी की और हम फिर नहीं समझते। यह आयत इस बात की दलील है कि इस कुरान को अपनी जुबान में समझिए। आप कह दीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में बहरापन और बोझ है, और जिन पर अंधापन है ये वो लोग हैं जो किसी दूर दराज जगह से पुकारे जा रहे हैं। यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, सो इसमें भी इख्तलाफ किया गया। अगर वो बात पहले से ना हो चुकी होती जो आपके रब की तरफ से है, यानी वो बात जो आपके रब की तरफ से पहले से मुकर्रर की गई, तो इनके दरमियान कभी का फैसला कर दिया गया होता। ये लोग तो इसके बारे में सख्त बेचैन किए जाने वाले कुलक में शक में शामिल हैं, यानी ये लोग इसके बारे में सख्त बेचैन करने वाले शक में हैं। जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने नफे के लिए, और जो बुरा करेगा इसका वबाल इसी पर है, और आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। तो कुरान मोमिनों के लिए शिफा और हिदायत है। आप देख लीजिए हुदम व शिफा, कुरान से फायदा उठाने वालों के दर्द चाक बुलंद किए जाते हैं। ये लोग अपनी रूहानी बीमारियों से भी शिफा पा लेते हैं। कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है। अक्ले सलीम वाले राह हिदायत हासिल करते हैं। गुमराही में डूबे हुए मजामीन हिदायत को जानना ही नहीं चाहते, तो इसलिए फिर आज आपके लिए भी कुछ कुरान के तोहफे हैं। हतहदीसे नेमत है। इस बारे में चूंकि इस्तकामत की बात थी, तो दौरे कुरान के बाद इस्तकामत फिल कुरान के लिए आपको रेगुलर बेस कुरान के जो कोर्सेज हैं उनका थोड़ा सा तारुफ दिया जा रहा है। ये पहला फ्लायर नॉर्वे का फ्लायर है, जो साथी हमारे इस वक्त ओस्लो और पूरे नॉर्वे के इर्द गिर्द में जहां नॉर्वे में से सुन रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। याद रखिए आपके दाखिले की शर्त यह है कि आपके एड्रेस में नॉर्वे का एड्रेस होगा। इसके लिए वेब पेज मौजूद है, आपको आज सारे लिंक्स दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए, कल बता दिया गया था, आज आपके लिए इसमें चीजें ऐड कर दी गई ताकि आप इससे फायदा उठाएं। बस ये कह लीजिए कि एक दफा आजमा लें, ना अच्छा लगे तो छोड़ दें। आप में जो सिस्टर घरों में हैं, बाहर हैं, जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं वो आज फॉर्म फिल करें इसको, और उसके बाद आपसे पर्सन टू पर्सन बात की जाएगी। अब नर्वे से बाहर वाले नाराज हो गए हैं, मुझे उनकी शक्लें दिख रही हैं, मासूम सी भूगी हुई, क्या करें हम इतने लोग किधर जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमतिही ततीमुस सालिहात, लोगों के यहां हर साल एक बच्चा पैदा होता है, वो तो अब नहीं होने देते, परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ने इस प्लेटफॉर्म को बड़ी बरकतों में रखा हुआ है, तो इस साल का बेबी सीरुल जन्ना 21 आपके सामने है। नॉर्वे से बाहर वाले इसको ज्वाइन करेंगे, ये फुल टर्म ऑनलाइन कोर्स है। और आप कहेंगे नॉर्वे वाले ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। अब इससे बात क्या कहूं ज्यादा, इनकी सब डिटेल्स मौजूद है। वो लोग जो सीरुल जन्ना कर चुके अब वो क्या करें, जो किसी भी प्लेटफॉर्म किसी अच्छे मुस्तनद कुरान सुन्नत पढ़े पढ़ाए हुए इदारे से लफ्जी तर्जमा तफसीर का कोर्स कर चुके हैं और तौरे कुरान सुन रहे हैं वो क्या करें, वो नूरुल्ला नूर करेंगे। हम वेलकम करते हैं हर प्लेटफॉर्म के पढ़े हुए को, हम ये कभी नहीं कहते कि आप जाइए पहले हमारे ही सीलुल जन्ना कोर्स करें और फिर नूरुल्ला नूर पे आए, क्योंकि मुसलमान दूसरे सही दीनी इदारों पर ट्रस्ट करता है। तो नूरुल्ला नूर कोर्स आपके लिए है। और अलामा इकबाल की भी कुछ बातें सुन जाइए जाते जाते। क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। जन्नत तेरी पिनहा है तेरे खूने जिगर में, ऐ पैकरे गुल कोशिशे पहम की जजा देख। तो ये कोशिशे पहम की जजाएं आप जन्नत की सूरत में देखेंगे। मुस्तकिल कोशिश के लिए आपको कोई ना कोई कुरान का सफर लेना पड़ेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक ले लीजिए।